अभी हम सबके बीचों में आदरणीय राजयोगी डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई जी पहुंचे हैं। नीचे से शांतिवन से खास हम सबसे मिलने के लिए क्लास कराने के लिए आए हैं। हम सभी भाई बहनों की तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। 31 साल से आप बाबा के ज्ञान में हैं, 22 साल से मधुबन सेवा पर है। आप सभी जानते हैं परिचय देना जिनके काम इतना महान है, अर्थात आप सभी बहनों का और जितने ब्रह्मा कुमार कुमारियों का हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज है बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया, अर्थात बिना ऑपरेशन से हार्ट का जो ब्लॉकेज है वो योग के द्वारा कैसे खुल जाता है, ये चमत्कारिता आपको बाबा ने ये कला दी है। और साथ साथ आप अभी ट्रोमा जो नीचे ट्रोमा सेंटर है उसका भी देखभाल कर रहे हैं, दायित्व है उसका पूरा। और दादी दीदियों का, सभी बड़े भाइयों का हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक होता है। अगर हेल्थ खराब है तो क्या होता है, मन भी मायूस हो जाता है। हमारे सतीश भाई जी, आज तो बाबा ने कहा ना सत टीचर सत शिक्षक, तो आपका नाम भी इतना सुंदर है। अभी हम सब उनसे सुनेंगे दोबारा फिर कर ध्वनि से आपका स्वागत, स्वागत।
ओम शांति। ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। बाबा के जो ब्रह्मा बाबा ने साकारी होते भी, शरीर में होते भी क्या बन के दिखाया, निराकारी बन के दिखाया, निर्विकारी बन के दिखाया और निरहंकारी बन के दिखाया। तो हम सबके सामने सब कर्म करते फिर भी निराकारी जीवन कैसी होती है, आत्मा काम हर कार्य कर रही है वो स्थिति कैसी होती है, जरा भी देह का भान ना हो, एकदम देही मन स्थिति हो, कोई विकार का अंश मात्र भी ना हो, किसी भी विकार का, ना काम का, ना क्रोध का, ना लोभ का, ना मोह का, ना अहंकार का, किसी के अंश मात्र भी उसकी, किसी का भी कोई अंश का भी अंश दिखाई ना दे कभी जीवन में, और कोई कभी भी अहंकार ना हो, ऐसी स्टेज। और बाबा आप स्मरण बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमको भी ऐसा बनना पड़ेगा, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकार। निर्विकारी में वैसे निरहंकारी नहीं आता है क्या, अलग से क्यों आता है, निर्विकारी में निरहंकारी नहीं आता है। पांच विकार होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और फिर अहंकारी शब्द अलग क्यों लगाया, आपने कभी सोचा इस बात को, निर्विकारी में पांचों विकार आ गए ना, नहीं आए, पांचों विकार नहीं आए, अहंकार भी आ गया, फिर बाद में निरहंकारी क्यों बोला बाद में, क्योंकि निराकारी बनने का भी अहंकार हो सकता है, निर्विकारी बनने का भी अहंकार हो सकता है, नहीं कि मैंने सब विकारों पे जीत पा ली है, इसका भी अहंकार हो सकता है ना, उसके बाद फिर उसका भी अहंकार का नहीं अहंकार ना रहे, तो निरहंकारी, ठीक है। सकता है, इसी बात को हम गहराई से समझेंगे, क्योंकि एक बाबा ही हमारा ऐसा है जो आज मुरली में भी सुना ना आपने, सत्य सत्य बाप क्या सुनाता है हमको, सत्य ही सुनाता है ना। सच सुनाने वाला सिर्फ एक है, सारे दिन में सच सुनाने वाला एक है, बाकी जितने भी सब है क्या सुनाने वाले, झूठ सुनाने वाले ना। तो हमें सत्य बाबा और मुरली बाबा सुनाता है, तो कौन मुरली क्या है सारी, बाबा की सत्य है राइट। तो निराकारी से निर्विकारी बनते हैं ना, जितना हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करते जाएंगे, जितना जितना निराकारी स्थिति, मैं निराकारी आत्मा हूं, आज बाबा ने मुरली में भी कहा ना बच्चे, हे निराकारी आत्मा मुझे अपने निराकारी बाप को याद करो, है ना। बाबा बाबा ने दो बार बोला ना निराकारी आत्मा, फिर कहा हे आत्माएं तुम अपने अपने बाप को याद करो, है ना, मामे कम याद करो। तो जितना हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करते जाएंगे, अर्थात आत्म मन स्थिति का अभ्यास करते जाएंगे, मैं आत्मा अलग हूं ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं ये शरीर अलग है, मैं आत्मा शरीर को चलाती हूं, ये अभ्यास जितना इसका अभ्यास, और यही हमारा पहला चैप्टर और आखिरी चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा क्या है, मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास करना, आत्म अभिमान स्थिति का अभ्यास करना, और फिर हमारा आखिरी चैप्टर कौन सा है, आत्मा आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, आत्मिक आत्मा आत्मा बन जाना, है ना, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर कर्म करते आत्मिक भान में रहना, है ना, हमेशा नेचुरल हो जाना। तो ये हमारी अंतिम स्टेज है ना, राइट। तो हमारे जो पहला चैप्टर आखिरी चैप्टर है ही ये, तो जैसे जैसे हम इस बात को बहुत हम गहरे और गहराई और विस्तार से लेंगे, कैसे हम निराकारी से निर्विकारी बने, है ना, कैसे हम निराकारी से कैसे धीरे धीरे हम हमारी स्थिति निर्विकारी, मतलब पांचों विकारों से, और पांचों विकार का अंश, पांचों विकार का अंश भी है ना, अंश और वंश है इनका, है ना, रायल स्वरूप भी है और सूक्ष्म स्वरूप भी है, पांच विकारों, खाली पांच विकारों की बात नहीं, उसका रायल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप है, उसको भी हमें खत्म करना है ना, तो उसको भी खत्म करना है, तो पूरा निर्विकारी बन जाए, पांचों विकारों का अंश मात्र ना रहे, इनके इनके भी अंश और वंश खत्म हो जाए, और फिर निरहंकारी कैसे बने, है ना, वो भी इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें समझना है कि हमारी जो आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, जब आत्मा शरीर के बाहर है तो आत्मा शरीर के बाहर है तो मन बुद्धि संस्कार समेटे हुए है, जब पांचवें महीने में आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो आत्मा यहां पर, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, वहां पे आके बैठ जाती है, उसके बीच में आके बैठ जाती है, वो सीट है आत्मा की, क्योंकि दोनों ब्रेन राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का भी कंट्रोल रूम है हाइपोथैलेमस, तो वहां से आत्मा सारे शरीर की एक्टिविटी को कंट्रोल, जैसे ड्राइवर कहां बैठता है, जहां सब कुछ कंट्रोल होगा वहीं बैठेगा ना, है ना, तो इसी हाइपोथैलेमस से गर्म तार ठंडी तार आती है, गर्म एक सिंपैथेटिक सिस्टम एक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, पूरी बॉडी को खतरे की भावना या सब ठीक है बेफिक्र बेफिक्री की भावना, उसको वहां से कंट्रोल होता है, ठीक है, जागने का सिस्टम वहीं से कंट्रोल होता है ना, पूरा सिस्टम वहां से कंट्रोल होता है राइट। तो अभी जो है आत्मा हमें, जैसे हमने जो कहा निराकारी, ये जो ज्ञान है ना, जो बाबा का ज्ञान है, जो बाबा ने ज्ञान दिया, सत्य ज्ञान दिया, सत्य ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान का मतलब समझ, किसकी समझ, सत्य की समझ राइट। तो सत्य की समझ, हम अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, ट्रूथ क्या है, गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सदा सत्य है, फिर परमात्मा ने हमें और सत्य भी बताया है कि बच्चे आत्मा भी सत्य है, चार सत्य हैं, सत्य की समझ चार बातें हम बाबा ने बताई, एक तो आत्मा सत्य है, एक परमात्मा सत्य है, एक आत्मा और परमात्मा का संबंध सत्य है, और तीसरा चौथा ये सृष्टि रूपी ड्रामा, इसमें जो कर्म का सिद्धांत है वो भी सत्य है। सत्य की परिभाषा क्या बताइए, सत्य की परिभाषा क्या होती है, सत्य वो है जो कभी मरता नहीं है, सत्य सदा एटर्नल है, सदा ही है, अविनाशी है, सत्य सदा ही रहता है, कभी भी मरता नहीं। दूसरी बात, सत्य कभी बदलता नहीं है, सत्य कभी बदलता नहीं है। तो ये दो बातें हैं। अब एक इंसान में सत्य क्या है, देह एक दिन पैदा होते किसी मर जाती है, तो देह तो नहीं है। दूसरी बात, ये जो रोल मिला है हमको समाज में, एक मेल का एक फीमेल का, ये सत्य है असत्य है? ये भी असत्य है ना। फिर हमारा जो रोल है, कोई मतलब बच्चा है, माँ है, बाप है, पिता है, पत्नी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैरिस्टर है, ये तो लेबल है ना समाज से जो हमें मिला, ये क्या सत्य है असत्य है? क्योंकि ये भी बदल जाता है, ये तो एक दो घंटे में बदल जाता है। किसी के साथ है, बच्चे के साथ है तो बाप है, पत्नी के साथ तो पति है, है ना, और ऑफिस में है तो डॉक्टर, इंजीनियर है, बिजनेसमैन, जो भी है वही है ना। बदल गए नहीं बदल गए? ऐसे माँ लेडीज का संबंध भी बदलता है ना, कभी पत्नी, कभी पिता, कभी बेटी, कभी क्या, कभी ना पत्नी, कभी कभी माँ, कभी अलग अलग, कभी भाई, कभी बहन हो जाते हैं, कभी ना? या प्रोफेशन में भी है तो प्रोफेशन में भी नाम बदल जाता है ना, तो ये भी सत्य है। तो मतलब भी हमें अपने आप से चलते फिरते इस सत्य को रियलाइज करना है। मेडिटेशन क्या है, राजयोग का मेडिटेशन क्या है? क्योंकि विकार कहते हैं राजयोग के द्वारा हमें विकारों पर विजय प्राप्त होती है, हम विकर्मा जीत बनते हैं, है ना। तो अगर हमें निर्विकारी बनना है तो हमें राजयोग करना पड़ेगा। राजयोग, राजयोग क्या है, राजयोग मेडिटेशन क्या है? राजयोग मेडिटेशन है, अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो राजयोग का मेडिटेशन है बीइंग द ट्रूथ, लिविंग द ट्रूथ और रियलाइजिंग द ट्रूथ। सत्य बनना ही राजयोग मेडिटेशन है, सत्य बनना, सत्य जीना ही राजयोग का मेडिटेशन है, और सत्य अनुभव करते रहना ही राजयोग का मेडिटेशन है। ठीक है, तो सत्य हम जीना राजयोग का मेडिटेशन। सत्य क्या है, सत्य ही बताया ना, सत्य क्या है? मैं देह नहीं, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु निराकारी आत्मा। ठीक है, तो ये चलते फिरते अपने आप से बात करते रहो, उठते बैठते महसूस करते रहो, मैं निराकारी आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं आत्मा यहां दोनों भिक्टों के मध्य, दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस के बीच में बैठी, मैं सारे शरीर को चला रही हूं, मुझ आत्मा से सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं निकल रही है, और वो ब्रेन की 100 अरब कोशिकाएं, ब्रेन की कोशिकाएं, विश्व ब्रेन में कितनी कोशिकाएं हैं, 100 अरब कोशिकाएं हैं, आंख है, नाक है, कान है, मुख है, बाहर की त्वचा है, अंदर भी त्वचा है, है ना, एक मुंह के अंदर भी त्वचा, सांस की नाली में भी त्वचा है, पेट की नाली में भी त्वचा है ना, हमारी जो किडनी के अंदर भी त्वचा है, ब्लैडर के अंदर भी त्वचा है ना, सारी इसमें सारी नाली में त्वचा है, और जितनी आर्टरीज, जितनी वेन्स हैं, उनके अंदर अंदर भी त्वचा है, और शरीर में, पूरे शरीर में 80,000 अरब कोशिकाएं हैं, इसको चलाने वाला कौन, आत्मा। कैसे चलाती है आत्मा, आत्मा के पास क्या है, आत्मा के पास 7 चैतन्य ऊर्जाएं हैं, ज्ञान है पहला, दूसरा पवित्रता है, तीसरी शांति है, चौथा रूहानी प्यार, रूहानी प्रेम, वैसा दुनिया का प्रेम नहीं, कौन सा प्रेम, रूहानी प्रेम, पांचवा अतीन्द्रिय सुख, और छठा आनंद, और सातवां सर्वशक्तियां। तो ये 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं जिससे आत्मा शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रही है, यहां बैठी है, और यहां से वो ऊर्जा सारे शरीर में जा रही है। और परमात्मा कौन है, परमात्मा आत्मा का पिता है, परम पिता, सब आत्माओं का परम पिता है, और परम धाम में रहता है, और वो क्या है, अति सूक्ष्म है, वो परम चैतन्य, आत्मा चैतन्य है, चैतन्य माने जागती ज्योत है, किंतु परमात्मा क्या, परम चैतन्य है, वो सदा ही जागती ज्योत है, हमारी ज्योति कभी कम ज्यादा होती है, किंतु परमात्मा की ज्योति, ज्योति माना, ज्योति माना वो ज्ञान, वो समझ, परमात्मा को सदा ही है। ज्योति का मतलब ऐसे नहीं को दीवा जल रहा है यहाँ पे, दिया जल रहा है क्या यहाँ पे, मतलब ये समझ, ज्योति माने समझ, रोशनी, ये रोशनी आत्मा को कभी कम ज्यादा हो सकती है, किसी पाप का असर पड़ सकता है, कभी बादल रूप, पाप रूपी बादल कभी कभी सामने आ जाएगा, समझ कम हो जाएगी, किंतु परमात्मा को समझ कभी कम होती है क्या, सदा ही जागती ज्योत है ना, सदा ही मतलब परम ज्योति है ना, और परम पिता परमात्मा है ना, सभी का, सभी आत्माओं का पिता है, और सभी परमात्मा सुप्रीम सोल है, और वो जो परमात्मा है वो सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है। क्या है वो? पावर हाउस है ना। आत्मा जैसे बैटरी है तो परमात्मा कौन है? पावर हाउस है। यही भी कैसे सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का सागर है, सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का सागर है। तो अब आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो क्या करे? परमात्मा से कनेक्शन लगाना पड़े। तो अपने आप से चलते फिरते ये बात करनी है। मैं इसको हमेशा ABCD कहता हूं ना। ज्ञान सार रूप में चार बातों का है ना। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन और डी फॉर ड्रामा। तो इन चार बातों को ABCD को रियलाइज करना चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय क्या करना है? इन चारों बातों को अनुभव करते रहो, यही राजयोग मेडिटेशन। हम सांस आधा घंटा सुबह शाम लेते हैं क्या सारा दिन लेते हैं? क्या जो आधा घंटा सुबह शाम सांस लेते हैं वहां उठा पूरा दिन लेते हैं ना? आत्मा सारा दिन रात सारे शरीर को चला रही है क्या? आधा घंटा सुबह शाम चला रही है ये आधा घंटा सुबह चला है आधा घंटा शाम, बाकी दिन में नहीं चलाती है। तो हमें इस सत्य को, ये अवेयरनेस हमें सारा दिन चाहिए। ये आत्मा तो सारा कार्य कर रही है सारा दिन, परमात्मा से करंट भी आ रही है, ये सारा दिन हो रहा है कि तो ये अवेयरनेस हमेशा हर समय चलती रहनी चाहिए। कुछ भी देख रहे हैं मैं आत्मा देख रही हूं, सुन रहे हैं मैं आत्मा सुन रहे, बोल रहे हैं मैं आत्मा खा रहा हूं, बोल रहे मैं आत्मा खा रही हूं, मैं आत्मा हार्ट से हार्ट, हार्ट कितनी देर चलता है? सुबह शाम एक मिनट में 70 बार है ना, एक मिनट में 70 बार। सांस कितनी बार आता है? एक मिनट 14 बार। कौन ले रहा है सांस? कौन ले रही है? फेफड़ों के द्वारा। आत्मा ही ले रही है ना। हार्ट को कौन चला रहा है? आत्मा ही चला रही है ना। तो ये हमें समझने की बात है, ये अवेयरनेस हर समय ये फीलिंग रहे कि आत्मा, मैं आत्मा हार्ट को चला रही हूं, मैं आत्मा लंग्स को चला रही हूं सांस ले रही हूं, मैं आत्मा पेट में खाना पचा रही हूं, मैं आत्मा किडनी के द्वारा खून साफ कर रही हूं, मैं आत्मा पैरों से चल रहा हूं। ये निरंतर अभ्यास चाहिए, ठीक है। और मुझे आत्मा के पास सात एनर्जी कम हो गई इसलिए अंगों में बीमारी आ गई, चाहे हार्ट की बीमारी आ गई, चाहे वो सांस की बीमारी आ गई या लिवर की बीमारी, पेट की बीमारी, पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती, क्यों बन रही है? क्योंकि आत्मा के अंदर वो एनर्जी कम हो गई। पैरों में दर्द होता है, क्यों होता है? कमर में दर्द क्यों होता है? आत्मा में वो एनर्जी कम हो गई। मन क्यों भटकता है? मन में इधर उधर के विचार क्यों आते हैं? मन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? आत्मा में एनर्जी नहीं रही है, आत्मा एनर्जी मन को दे नहीं पा रही है, शुद्ध एनर्जी नहीं मिल रही है। बुद्धि क्यों भटक रही है? बुद्धि राइट डिसीजन क्यों नहीं ले पा रही है? क्योंकि आत्मा में एनर्जी नहीं है ना? ऐसे ही हमारी पुरानी आदतें, खराब आदतें, विकारी आदतें हावी क्यों हो रही है? आत्मा में एनर्जी कम है। तो मेन बात है एनर्जी की है ना, वो सात चेतन है। तो ज्ञान जो है और ज्ञान से सारी बाकी एनर्जी बनती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर से एनर्जी आती नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना ऊपर से परमात्मा शांति का सागर है मुझ में, परमात्मा से शांति की किरणें मुझ में आ रही हैं, मैं शांत होता जा रहा हूं है ना, परमात्मा से प्यार की किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं, मेरे सारे शरीर में जा रही है, मैं प्रेम स्वरूप बनता जा रहा हूं, ऐसे करते हैं ना? ऐसे ऊपर से आती है क्या? ऊपर से आती है? बोलो, आ रही है? फिर होता है, फिर तो आ जानी चाहिए, आपको शांत हो जाना चाहिए, प्रेम आ जाना चाहिए, पर आता तो नहीं। हमें बनानी पड़ती है, हमें बनाना पड़ता है। ये रॉ मटेरियल है, ये बाबा की मुरली या ज्ञान रॉ मटेरियल है, और इस रॉ मटेरियल से हमको ये एनर्जी बनानी है, पवित्रता हमको बनानी, यही मेहनत है ना? ज्ञान से पवित्रता मुझे बनानी है। तभी क्या बाबा कहता है अपनी घोर तो नशा चढ़े, क्या बोलता है? अपनी घोर तो नशा चढ़े, मतलब नशा किस बात का? पवित्रता का नशा कब चढ़ेगा? पवित्र आत्मा कब बनेगी? जब मैं इस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन स्मरण करूं, ये निराकार स्थिति का मनन चिंतन मंथन स्मरण करूं, तो पवित्रता आएगी ना, समझ रहे? निर्विकारी बनने का एक प्रोसेस है ना, उस निर्विकारी बनने के प्रोसेस में कैसे होता है, मैं कैसे निर्विकारी बनती है आत्मा, इस बात को हम गहराई समझना चाहिए। ठीक है, तो जितना हम इस ज्ञान को दिल से दिन रात हर सेकंड, कल की संडे की मुरली थी ना, तुम्हारा एक एक सेकंड हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म कितना मूल्य है, वैल्यूबल है, हीरे से भी ज्यादा कीमती ना, तुम्हारा एक एक सेकंड कितना वैल्यूबल है, हीरे से भी ज्यादा, कितने हीरो के बराबर एक सेकंड है ना। तो हमारा हर एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, एक एक श्वास हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, इस सत्य को जीना चाहिए। मैं कौन हूं, कैसे मैं आत्मा सारे शरीर को चला रहे हूं, फिर मैं मुझे आत्मा का पिता कौन है, परम पिता कौन है, परमात्मा, परमात्मा कौन है, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का सागर है, पावर हाउस है, और परमात्मा मुझे क्या देता है, ज्ञान देता है, ज्ञान सागर है पहले, फिर बाबा कहता है ये पढ़ाई ही मेरी कृपा है, मैं तुमको पढ़ाता हूं, यही मेरी कृपा है, यही मेरी आशीर्वाद है, जितना इस पढ़ाई को आप चलते फिरते उठते बैठते यूज करोगे, मनन चिंतन मंथन करोगे, उतना तुम पवित्र बनते जाओगे। तो बाबा पहले ज्ञान सागर है, फिर पतित पावन है, पहले पतित पावन नहीं है, ज्ञान सुना के हमको पावन बनाता है, और ये हमारी मेहनत है, राइट। तो चलते फिरते अनुभव करते रहो कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, वो परमपिता परमात्मा शिव मेरा, और वो जो शिव बाबा है वो सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जा का सागर है, पावर हाउस है, वो सदा सत्य है, ज्ञान का सागर माना सदा सत्य है, ज्ञान माना ही सत्य है, ज्ञान का क्या अर्थ है, सत्य, ट्रुथ, मेडिटेशन का अर्थ क्या है, सत्य, ट्रुथ, ज्ञान है सत्य और मेडिटेशन क्या है, राजयोग क्या है, योग क्या है, ज्ञान है सत्य और योग क्या है, सत्य बन जाना, उस सत्य को अनुभव करना योग है, और सत्य बन जाना धारणा है, ठीक है, और फिर सेवा क्या है, उस सत्य का फिर वाइब्रेशन सारे वायुमंडल में फैलाना, वो सेवा है। चार सब्जेक्ट है हमारे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो सत्य क्या है, ज्ञान, सत्य का अनुभव करते रहना, योग और सत्य बन जाना, धारणा और सत्य के द्वारा वो सत्यता के वाइब्रेशंस सबको देना, सबको अनुभव कराना कि वो भी आत्मा है, वो भी परमात्मा की संतान है, उसके साथ उसके सर्व संबंध है, और संसार आपकी नाटक भी सत्य है, ड्रामा भी सत्य है ना, ये अनुभव कराना ये सेवा है, ठीक है, राइट। तो ये सत्य को बार बार अनुभव करते रहो, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, और मेरा शिव बाबा जो सदा सत्य है, सत्य सत्य माना वो क्या है, सदा ही आत्मा है, वो कभी भी देहधारी नहीं बनता है, देह में आता जरूर है किंतु देहधारी नहीं बनता है, जन्म नहीं लेता है, उसका मरण नहीं होता है, वो सदा पावन है, पावन माना वो सदा ही सबको आत्मा देखता है, पावन का मतलब क्या है, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर बाबा क्या देखता है, हम सबको क्या देखता है, आत्मा देखता है, किसी को मेल फीमेल नहीं देखता है, किसी को डॉक्टर इंजीनियर नहीं देखता है, किसी को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं देखता है, गरीब अमीर नहीं देखता है, पढ़ा लिखा या अनपढ़ नहीं देखता है, देखता है क्या, सबको आत्मा देखता है, वो है पावन, वो पावन स्थिति है, सदा ही क्या है, शांत है, बाबा को कभी पास्ट का ख्याल नहीं आता, ये ऐसा बच्चा ऐसे करता था पहले, अभी ऐसा करता है, कभी ख्याल नहीं आता है ना, बाबा को कभी भविष्य की बात नहीं समझ में आ, सोचते ही नहीं है बाबा, सदा वर्तमान में रहते हैं, और वर्तमान में भी कुछ सोचते नहीं है, जो होना होता है ड्रामा अनुसार उनको टच होता है और वो बोल देते हैं, संकल्प भी नहीं करते शिव बाबा क्या बोलना है ना, तो इसलिए सदा शांत है, उनको संकल्प चलते ही नहीं है, ड्रामा अनुसार, एक दिन मुरली में आया था ना बाबा द्वापर युग में ज्ञान सुना देते हैं, अगर बाबा को सिर्फ उसमें साक्षात्कार कराना होता है, अगर बाबा के बुद्धि में ज्ञान का पार्ट होता तो बाबा उसमें भी थोड़ा ज्ञान सुना देते, सुनाया क्या बाबा ने ज्ञान, अभी संगम पे ही पाठ चालू हुआ बाबा का ना, तो बाबा को ये भी नहीं है, इस बात से भी बाबा दूर है कि ज्ञान सुनाने की, कब ज्ञान सुनाना है, क्या सुनाना है, उसको उस बात की भी वो नहीं है, वो भी संकल्प नहीं चलता है ना, राइट। इतना शांत है बाबा, शांत सदा, मतलब डेफिनेशन शांति क्या होती है, बाबा ऐसा शांत है, हमें भी क्या बनना है, ऐसा शांत कि हमें ना पास का चिंतन हो, ना भविष्य की चिंता हो, वर्तमान में भी क्या हो, बस अपने सत्य स्वरूप में टिके रहे, बाप से कंबाइंड होकर रहे, ऐसी स्थिति हो ना, सदाई रूहानी प्यार है। सदाई बाबा क्या, रूहानी प्यार, रूहानी प्यार का सागर है ना। किसी को कोई कैसा भी हो, सबको आदर से स्वीकार कर लेता है बिना शर्त के। कोई कैसा भी हो, डाकू हो, आतंकवादी हो, उसको क्या करता है, तू आतंकवादी, तेरा हवा पानी बंद, ऐसे करता है क्या है? सबको बराबर है। आतंकवादी भी क्या करता है, अटैक करने से पहले क्या करता है, भगवान के पास जाता है, अल्लाह के पास जाता है ना, उसको भी प्रार्थना करके आता है ना। उसको भी क्या लगता है, भगवान क्या बोल रहे हैं, अल्लाह क्या बोल रहा है, जाओ बच्चे जाओ है ना, तो सफल हो जाओ, तथास्तु है ना। नहीं, डाकू भी जाता है तो भगवान के पास क्या करता है, उसको भी लगता है भगवान मेरे को बहुत प्यार करता है, बहुत खुश है मेरे से है ना, उसको भी उसके प्रति भी भेदभाव नहीं है। भेदभाव है क्या, तू डाकू है चल तेरा काम खराब हो जाए, ऐसा करता है क्या, नहीं, सबको आदर से स्वीकार करता है, बिना शर्त के स्वीकार करता है। ऐसा 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 रूहानी प्यार हमारे पास है क्या, हम जजमेंटल हो जाते। ऐसा रूहानी प्यार, अतिंद्रिय सुख, बाबा को इच्छा नहीं है, है इच्छा क्या, संतोष है, बाबा सोचता है कि बच्चा बड़ा ऊंचा बन जाए, ये लक्ष्मी नारायण बन जाए, ऐसा सोचता है, कभी नहीं सोचता है। जैसा कर्म वैसा फल, जो जितना बाबा ने सिखा दिया, फिर जो जितना करे उतना पाए, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। इसको ज्यादा पढ़ा दूं ये बच्चा, इसको ये बच्चा थोड़ा सा इसको काम आएगा, ये इसको ज्यादा पढ़ा दूं, इसको कम पढ़ाऊं, ये तो सेवा नहीं करती, इसके तो शादी हो गई, ये तो अकेले कुमारी है, इसको ज्यादा पढ़ा दूं, इसको कम पढ़ाऊं, ऐसा करता है पापा क्या, सबको बराबर पढ़ाता है ना। कुमारी हो चाहे कुमार हो, चाहे शादीशुदा हो चाहे ना अदर कुमारी चाहे अदर कुमार हो, नहीं पढ़ाता सबको बराबर। ये अतिंद्र सुख है ना, बाबा को कोई इच्छा नहीं है, कंटेंटमेंट, पूरी कंटेंटमेंट, आनंद है सदा, आनंद माना, आन माना बंधन, देह और देखी दुनिया के बंधन के पार है, सदा ही पार है ना, हमें जाना पड़ता है, वो सदा ही पार है, सदा सर्वशक्तिमान है। तो ऐसा मेरा बाबा है, उसमें सातो एनर्जी का बैलेंस है, कुछ चीज कम ज्यादा हम में क्या होता है, कभी ज्ञान ज्यादा आ गया, किसी के अंदर ज्ञान बहुत ज्यादा है, पवित्रता कम है, किसी से लगाव झुकाव में है तो पवित्रता कम होगी ना, कि शांति किसी पवित्रता है पर शांति नहीं है, पास की कभी कभी बिचारे बातें आ जाती हैं, कभी भविष्य की आ जाती है, कभी शांति भी है किंतु फिर रूहानी प्यार नहीं है, सबको स्वीकार नहीं कर पाता है, इसने मेरे को ऐसा किया था, इसको इससे मैं मुझे बात नहीं करनी है ना, सबको स्वीकार नहीं कर पाता है ना, तो रूहानी प्यार कम हो गया, अतिंद्रिय सुख कम है, कोई ना कोई इच्छा है बाकी बची है, कोई नाम मान शान की इच्छा बची हुई है ना, तो अतिंद्रिय सुख नहीं, आनंद कम है ना, इससे शक्ति नहीं कोई, तो मतलब हम बच्चों में कोई ना कोई रह जाता। सातों प्यार बाबा, सातों एनर्जी का बैलेंस है और हीलिंग एनर्जी का सागर है शिव बाबा। तो ऐसा मेरा बाबा क्या कर रहा है, मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार देता है, सर्व संबंधों की पालना और प्यार। सर्व संबंध की पालना और प्यार का मतलब क्या, सर्व संबंध माना हर संबंध, क्योंकि मुख्य नौ संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको मुख्य नौ संबंध का मतलब समझा देता हूं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जब निराकारी से निर्विकारी बनना चाहते हैं तो हमें निर्विकारी बनने के लिए हमें इस दुनिया के संबंध तोड़ने पड़ेंगे, उससे हर संबंध का अनुभव होगा, तो ये संबंध टूट सकते हैं। टूट सकते हैं ना, घर छोड़ना नहीं है, इधर इधर जोड़ निभाना है और इधर तोड़ निभाना है, वहां जिम्मेवारी निभानी है और यहां संबंध निभाना है। शिव बाबा संबंध निभाओ और वहां पर जिम्मेवारी, तोड़ माना जिम्मेवारी, फर्ज पूरा निभाओ, ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां छोड़ना है फर्ज, है ना, जो मेरी जिम्मेवारी है फर्ज है उससे अच्छे से निभाए, और तभी निभा सकते हैं जब बाबा से करंट आ जाए। अगर बाबा से करंट नहीं होगी तो क्या होगा, हम निभा नहीं सकेंगे, ठीक है। चलो एक मिनट बाबा को याद, ओम शांति। तो ये सत्य, जो एबीसीडी की बात चल रही थी, सत्य को अनुभव करना, हमें रियलाइज करना है, विजुलाइज नहीं करना है। तो पहला संबंध है हमारा माँ का संबंध है, शिव बाबा के साथ हमारा क्या संबंध है, माँ का संबंध है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें माँ की पालना और प्यार दे रहे हैं, और माँ के रूप में क्या करते, दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही क्या करते हैं, मनुष्य से हमें ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण और मनुष्य में क्या फर्क है, मनुष्य मतलब मन के वश में, मन किसके वश में, कर्मेंद्रियों के वश में, कर्मेंद्रिय किसके वश में, किसके वश में, कर्मेंद्रिय में क्या भरा पड़ा है, आंख में क्या भरा हुआ है, आंख से क्या दिखाई देता, देह दिखाई देते, देह के संबंध दिखाई देते, देह के पदार्थ दिखाई देते, कान से क्या सुनाई देता, देहधारियों की बातें सुनाई देती, मुख से क्या क्या खाते, स्थूल चीजें खाते और क्या बोलते, देहधारियों से बोलते है ना, तो हमारी कर्मेंद्रियों में क्या भरा पड़ा है, देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ भरे पड़े, और देह के स्वभाव संस्कार, देह के स्वभाव क्या है, पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही आंख क्या देखती है, काम विकार की नजर, क्रोध की नजर, लोभ की नजर, मोह की नजर, अहंकार की नजर, दिखाई देता ना आंखों से कि काम भी कामी की नजर कैसी होती है, क्रोधी की नजर कैसी होती है, लोभी की नजर कैसी होती है, मोह की नजर कैसी होती है, अहंकार की नजर कैसी होती है, बोल भी क्या, काम विकार के बोल, क्रोध के बोल, लोभ के बोल, मोह के बोल, अहंकार के बोल, ना नहीं होते, सुनाई भी क्या होता है, ये पांचों बातें सुनते ही नहीं सुनते है ना, तो मतलब ये कर्मेंद्र भी ये विकार भरे पड़े हैं, ठीक है, और क्या है, ये तो पांच विकार देह का स्वभाव है, और देखिए संस्कार, देखिए आदत क्या है, आलस्य, रोम रोम से क्या निकलता है, आलस दिखाई देता है ना, देहधारी के क्या दिखाई देता है, रोम रोम से क्या दिखाई देता है, आलस्य दिखाई देता है ना, अलबेलापन दिखाई देता है, दूसरों में दोष दिखाई देता है, बदला लेने की भावना दिखाई देती है, शक दिखाई देता है, अनुमान दिखाई देता है, चिंता दिखाई देती है ना, डर दिखाई देता है, और जल्दीबाजी दिखाई देती है, और ईर्ष्या दिखाई देती है ना, तो दस ये देह की आदतें हैं, देवान की आदतें, तो ये भी हमारी दुश्मन है, ठीक है, राइट, ये भी रावण का रूप है ना, तो ये जो है इस पर जो है चारों, ये हमारे कर्मेंद्रियों पर, तो मनुष्य इनके वश में है, देह के वश में, देवान के वश में, देह के संबंधों के वश में, देह के संपर्क के वश में, देह के स्वभाव संस्कार के वश में, देह के पदार्थों के वश में, हम इसके वश में थे, ये चारों बातें हद है, हद है, देह भी हद है, देह के संबंध संपर्क भी हद में है, देह का स्वभाव संस्कार भी हद में है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जब है, जब आदमी ऐसे बैठा है, थोड़ा सा टेंशन आ जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर आ जाए तो ना काम विकार रहे, ना क्रोध रहे, ना लोभ रहे, ना मोह ना अहंकार रहेगा, ऐसी आलस अलबेलापन रहेगा, आग लग जाए तो क्या होगा, आलस में रहेंगे, अलबेलापन रहेगा, हाँ, ये जब तक मतलब हमारे अंदर वो है ना, ऐसे आराम से बैठे तब तक है ना, कोई चिंता हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सारे भाग जाए, मैं आत्मा हूं ये जाग जाए तो सारे भाग जाए, नहीं तो ये सारे जो है हद हद है, देखे पदार्थों की भी हद है, आज या कल नहीं है, तो ये हद के हैं, तो मनुष्य का मन कहां है, हद में है, मन और बुद्धि हद में है, और ब्राह्मण, ब्राह्मण माना ब्राह्मणा बेहद, जैसे ब्रह्मा को कहते ना ब्रह्मा, बेहद की माँ है ना, सबकी माँ, ऐसे ब्राह्मणा बेहद, जिसकी बुद्धि और मन बेहद में सदा रहे वो है ब्राह्मण, ठीक है, तो बेहद क्या है, एबीसीडी, आत्मा क्या है, हद है, बेहद है, बेहद 84 जन्मों का पार्ट है, कितनी बड़ी आत्मा है, छोटी सी, कितना 84, एक जन्म में कितना पार्ट होता है, तो 84 जन्मों का पार्ट, फिर आप परमात्मा क्या है, बेहद, सारे विश्व को कंट्रोल कर रहा है, कितनी आत्माएं हैं, 700 करोड़, कितने 84 लाख योनि है, सबको कंट्रोल, पांचों तत्व कितने बड़े हैं, सबको कंट्रोल कर रहा है ना, तो परमात्मा एक छोटा सा, और ऐसी आत्मा परमात्मा संबंध भी बेहद है, और फिर क्या है, ड्रामा भी बेहद है ना, तो सारा कुछ ये चारों चीजें बेहद है, तो ये जो है, तो ब्राह्मण में, ब्राह्मण के जीवन में क्या होता है, ये बेहद समाया रहता है मन में और बुद्धि में, सदा आत्मा बाबा सर्वसम्मत की अनुभूति और डी4 ड्रामा, यही समाया रहता है, और कुछ नहीं होता, वो है ब्राह्मण, ठीक है, तो हम क्या थे पहले, मनुष्य हद में थे, अब क्या हो गए, बेहद, तो बाबा हमें माँ, ये ब्रह्मा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा, माँ का रूप के द्वारा हमें क्या करता है, मनुष्य से ब्राह्मण का दिव्य जन्म देता है, और दिव्य जन्म देते ही दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में दे देता है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, आत्मा इस दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में बैठे और कहां पहुंच जाए, एकदम सूक्ष्म वतन में कहां पहुंच जाएगी, बाप दादा की गोद में पहुंच जाए, ठीक, कहां पहुंच जाए, सूक्ष्म वतन में नहीं, कहां पर ये लिफ्ट कहां पहुंचाती है, बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है, ठीक है, तो ये सूक्ष्म, ये लिफ्ट क्या है, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, दिव्य माना सत्यता की लिफ्ट, हमारी बुद्धि में सत्य जब आ गया ना तो हमारी बुद्धि क्या बन जाती है, लिफ्ट बन जाती है, ठीक है, यहां से बैठे और कहां पहुंच गए, सूक्ष्म वतन में, सत्य, सूक्ष्म वतन माना क्या, बाबा के दिल, सूक्ष्म वतन माना क्या, बाबा की दिल, बाबा का दिल तख्त, सूक्ष्म वतन ऐसा नहीं कोई स्थान है, स्थान है सूक्ष्म वतन नहीं, कि इतना दूर जाएंगे फिर वहां पे पहुंचेंगे सूर्य चांद तारों के पास, नहीं तार पार नहीं जाना है। जैसे आप देह और देह की दुनिया के बाहर जाएंगे, देह देह के संबंध संपर्क देह के स्वभाव संस्कार देह के पदार्थों के बाहर जाएंगे, कहां पहुंच जाएंगे? बाबा के दिल में पहुंच जाएंगे, दिल तक पे पहुंच जाएंगे। दिल में कौन जाता है बताओ, दिल में कौन जाता है? दिल में आप माँ बाप हैं, सपोज आप सब माँ बाप हैं, आपके दिल में कौन चढ़ जाता है? जो बच्चा सपूत होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, वफादार हो जाते हैं, दिल में देखेगा आपको भी, दिल में दिखाओ निकल कहां बैठा बच्चा, ऐसा होता है क्या? मतलब ऑटोमेटिक दिल में पहुंच जाता है ना, या स्थूल में दिल होता है क्या? सूक्ष्म दिल है ना, आत्मा का दिल, आत्मा का दिल, शरीर का दिल यहां नहीं पहुंचता है, यहां बच्चे बैठते हैं क्या? आत्मा का दिल। ऐसे परमात्मा का भी दिल है, परमात्मा का दिल किस चीज से बना है? परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम सुख आनंद शक्तियों का सागर है ना, सातों एनर्जी के बैलेंस का सागर, हीलिंग एनर्जी का सागर है। तो परमात्मा का दिल इतना बड़ा होगा, आत्मा के पास थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी पवित्रता, थोड़ी शांति, थोड़ी प्रेम, थोड़ा सुख, थोड़ा आनंद, इतना छोटा सा दिल है यहां बैठा है, ठीक है? परमात्मा का दिल कितना बड़ा होगा? बाबा कहते बाबा का दिल कितना बड़ा है? तो बाबा के दिल पे सो सकते हो, सैर कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, जो करना है बाबा के दिल पे कर लो, दिल तक कितना बड़ा है बाबा का। तो ये आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर माना पवित्र बुद्धि पवित्र मन, ठीक है? सूक्ष्म शरीर किस चीज का बना है? सूक्ष्म शक्तियों का बना है, मन बुद्धि संस्कार ही आत्मा का सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर की शेप क्या है? जैसा स्थूल शरीर है ऐसा ही सूक्ष्म शरीर है। जैसे एक ब्रेड होती है ना, सूखी ब्रेड होती है ना, सूखी ब्रेड ले लो और एक प्लेट में दूध डाल दो, प्लेट दूध में ब्रेड रख दो प्लेट में, तो दूध कहां गया? ब्रेड में गई। अब दूध की शेप क्या है? जो ब्रेड की शेप है, है ना? और ब्रेड की दूध की शेप, ब्रेड की शेप क्या है? जो दूध की इक्वल हो गए ना, दोनों दोनों बैलेंस हो गए ना। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में सारा कुछ है, हार्ट भी, हार्ट की आर्टरीज भी है, लफेफड़े भी, आंखें भी, नाक, सब कुछ है, सब कुछ ऐसा कैसा ही है। तो सूक्ष्म शरीर बेसिकली कुछ और नहीं, मन ही सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि यहां है, संस्कार भी यहां ही है, और सारे शरीर में क्या फैला हुआ है? मन फैला हुआ है। मन को हम इंग्लिश में तीन कहते हैं, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। तो जितना आपके आप इस बात का अभ्यास करते जाएंगे, बुद्धि में ही अभ्यास करते जाओ, कौन सा एबीसीडी का ना, तो मैंने बताया जैसे ही हम दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट बनती है तो वो काम कहां पहुंचा देती है? सूक्ष्म वतन, मतलब बाबा के दिल में पहुंचा देती है। तो सत्यता की लिफ्ट में बैठो, है ना, बुद्धि सत्य बुद्धि, सत्य सच्ची सच्ची बुद्धि, साफ बुद्धि। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट क्या है? कुछ और जादू मंत्र नहीं है, जिस सच्ची बुद्धि, सच्ची बुद्धि में ना जिसमें आत्मिक भान है, साफ बुद्धि जिसमें बाबा के अलावा कोई और नहीं है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना को, जिस बुद्धि में, जिस दिल में सिर्फ बाबा बैठा है, कोई देहधारी नहीं बैठा है, अपना देह भी नहीं बैठी है, कोई देह का संबंधी भी नहीं बैठा है, माँ बाप पति पत्नी नहीं बैठे, भाई बहन नहीं बैठा हुआ, बच्चे नहीं बैठे हुए, ज्यादातर क्या बैठे रहते, कौन बैठे रहते हैं हमारे दिल में? पति पत्नी बैठे रहते हैं, भाई बहन बैठे रहते हैं, और माँ बाप बैठे रहते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, कार बैठी रहती है ना, मकान बैठा रहता है, पैसा बैठा रहता है, गहने बैठे रहते हैं ना। तो जिसके दिल बिल्कुल साफ है, बाबा के अलावा कुछ भी नहीं, तो वो साफ दिल है। तो सच्ची दिल, साफ दिल ही क्या है? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट है, उसमें आत्मा को बिठाओ, कहां पहुंच जाओ? बाप के दिल में पहुंच जाओ, ठीक है? उसमें आत्मा को बैठे, साथ में कौन बैठेगा उस साथ? पवित्र बुद्धि पवित्र मन, सूक्ष्म शरीर माना पवित्र बुद्धि, ऐसा ही लाइट की बॉडी जैसे होगी ना। तो सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, जादू का खिलौना नहीं है, ठीक है? वो चमकीली ड्रेस क्यों है? चमकीली चमकीली ड्रेस, चमकीली ड्रेस में ना इतनी वो चमकदार है, पवित्र है ना, शुद्ध है ना, लाइट ही लाइट है ना, तो इसे चमकदार कहते हैं उसको, पवित्र बुद्धि पवित्र मन, ठीक है? ऐसे एकदम ऐसे कहां पहुंच जाओ? सूक्ष्म वतन में, वहां को सूक्ष्म वतन में कौन बैठा है? सूक्ष्म वतन में ना बाबा के दिल तक पे कौन बैठा हुआ है? अभी तक कौन बैठा है? एक ही जना जाके बैठा है, कौन बैठा है वहां जाके? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा वो है जिसने अपने पुरुषार्थ से अपने बुद्धि को संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बना दिया, अपने मन को संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बना लिया, और अपने संस्कारों को संपूर्ण बावन सत्व प्रधान बना लिया। तो बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है, संपूर्ण बावन सत्व प्रधान बुद्धि मन और संस्कार, ठीक है। तो वह है ब्रह्मा बाबा बैठे, ठीक है। अब उसकी दिल कैसी है, सच्ची और साफ, सच्ची है नहीं। शिव बाबा के दिल में कौन है, शिव बाबा के दिल नहीं, ब्रह्मा बाबा के दिल में कौन है, शिव बाबा है, और कुछ है ही नहीं, है ना। तो बाबा शिव बाबा कौन है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर। अब देखो सूक्ष्म वतन बनाओ, सूक्ष्म वतन कैसा बना, कैसा लग रहा है सूक्ष्म वतन, शिव बाबा का दिल है सूक्ष्म वतन, है ना। क्या सूक्ष्म वतन दिल में क्या है बाबा के, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम सुखानंद शक्तियों का सागर, और उसमें कौन बैठा है, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा क्या है, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बुद्धि, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान मन, और संपूर्ण पावन सत्व प्रधान संस्कार। तो बीच में ब्रह्मा बाबा बैठा, ऐसे शेप आकारी शेप बैठी है, उसके दिल में कौन बैठा है, ब्रह्मा बाबा के दिल में कौन बैठा है, शिव बाबा। शिव बाबा कौन है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर। अब समझ आया सूक्ष्म वतन क्या है, बन गया सूक्ष्म वतन। अब ऐसे दिल में जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चा है, सपूत बच्चा, वो जाके बैठेगा ना, आज्ञाकारी के बाबा क्या कहता, बच्चे दही मानी बनो, बच्चे पवित्र रहो, बच्चे सात्विक भोजन खाओ, शुद्ध सात्विक भोजन खाओ, आसक्ति में नहीं खाओ, कोई गलत काम नहीं करो, झूठ कपट नहीं करो, आज की मुंडी में था ना, कोई पाप कर्म नहीं करो, है ना। अब जो बाबा का श्रीमत पे चलने वाला आज्ञाकारी सपूत बच्चा है, बच्चे अमृत वेले पावरफुल योग करो, बच्चे रोज मुरली सुनो, मुरली पे मनन चिंतन मंथन सिमरण करो, किसी को दुख नहीं दो, मीठा बोलो, है ना। अब जो आज्ञाकारी है वो क्या पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिक दिल में पहुंच गया ना, सूक्ष्म वतन पहुंच गया। वो यहां रहते भी सूक्ष्म वतन में है, वो सूक्ष्म वतन वासी बन गया, नहीं बना, समझ में, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म शरीर क्या, पवित्र बुद्धि पवित्र मन, और सूक्ष्म वतन क्या, बाबा का दिल तख्त, ये वाला दिल नहीं, बाबा का ये दिल नहीं, बाबा का तो आत्मा, आत्मा है ना, आत्मा बिंदी है, सात गुणों का सागर है ना। तो सूक्ष्म वतन कुछ और, बाबा जब संगम युग शुरू होता है तो सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, सूक्ष्म वतन और क्या, बाबा के पास क्या मटेरियल है बनाने के लिए, ऊपर गारा मिट्टी है क्या बनाने के लिए, है ना। बाबा के पास तो सात ही गुण है, तो उसी का बाबा बनाएगा ना अपने दिल में, और दिल में बाबा कहते हैं, बाबा सूक्ष्म वतन वो स्थान है जहां पर देवताओं की और फरिश्तों की महफिल लगती है। तो अच्छा, देवताओं का एक माँ बाप, अभी अपने आप से लगाओ, आप माँ बाप हैं, बच्चे का कौन सा स्वरूप आप माँ के दिल में होता है, कौन सा दिल होता है, कौन सा स्वरूप होता है, जब बच्चा छोटा सा था, प्यारा सा था, मुस्कुराता था, उसको देख के ताकत आती थी, अच्छा लगता था, कितना प्यारा था, और अभी कैसा है, बात बात में गुस्सा करता है, बात बात में झगड़ा करता है ना। तो अभी खराब हो गया ना बच्चा, विकारी हो गया ना बड़ा होके, अभी पर माँ के मन में क्या रहता है, वो उस विकारी रूप को भी देखे बच्चा, माँ क्या याद करती है, मेरा बेटा, तो उसको वही छोटा बच्चा दिखाई देता है, प्यारा सा ना। तो जब भी बाबा हमको देखता है, बाबा हमको क्या करता है, मीठे बच्चे क्यों बोलता है, हमारा वो बचपन का स्वरूप, हमारा बचपन का स्वरूप कौन सा है, देवता स्वरूप है ना। अभी तो हम बूढ़े हो गए ना, आत्मा बूढ़ी हो गई नहीं हुए, तो अभी वो हमारा बचपन का स्वरूप देखता है, मेरा बच्चा देखो कितना प्यारा देवता स्वरूप वाला है ना। आदि अनादि स्वरूप देखता है परमधाम वाला, और चमकता हुआ बिंदु, और आदि देवता स्वरूप देखता है। हमारा ये स्वरूप देख के उसको लगता है, इसको मैं सब वापिस बना दूं, जैसे माँ भी क्या करती है, ये इतना खराब हो गया ना बच्चा, इसको मैं वापिस सुधार के क्या बना दूं, जैसे पहले था ना मीठा मीठा प्यारा प्यारा ऐसा बना दूं, है ना, नहीं करती है ना। तो ये बाबा जब हम ऐसे फरिश्ता बन के जाते हैं, फरिश्ता मन देवान से परे होकर जाते हैं, पवित्र बुद्धि पवित्र मन लेके जाते हैं, तो इस स्वरूप का मिलन अपने देवता स्वरूप से होता है। वो स्वरूप कहां पर है, बाबा के दिल में, कहां पर है, बाबा के माँ के दिल में जैसे होता है ना, ऐसे बाबा के दिल में वो स्वरूप होता है। वहां हमें जाके रियलाइज होता है, बाबा की गोद में बैठते हैं ना, हमको रियलाइज होता है, मैं तो देवता हूं। बाबा याद दिलाते, बच्चे तुम देवता, तू तो देवता है, तू इतना प्यारा है, तू तो इतना मेरी आंखों का तारा है, तेरे से तो मेरी ये उम्मीद है, तेरे से तो मेरे को ये ऐसा है, तेरे से तो मेरे को ऐसा है, तू ये सेवा कर, कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे पूछ ले ना, कुछ तकलीफ है, सिर्फ हार्ट में दर्द हो रहा है तो तेरा हार्ट ठीक हो जाएगा, सिर में दर्द हो रहा है सिर ठीक हो जाएगा, चलो कोई बात है तो बाबा ठीक कर देता है ना। वो ऐसी अनुभूति होती है, जैसे माँ की गोद में क्या करता है, बच्चा थका हुआ 60 साल का बच्चा भी 80 साल की माँ होती है ना, तो 80 साल की माँ 60 साल का बच्चा भी गोद में जाकर लेट जाता है, होता तो बूढ़ा है, वो भी बूढ़ा है, तो माँ उसको ऐसे कर देती है ना, उसका सिर दर्द ठीक हो जाता है, नहीं हो जाता है? नहीं होता है? अब तुम 60 साल के हो, आज भी तुम्हारी अगर माँ जिंदा है तो क्या करेगी? तुम जाओ ना माँ, मेरे बेटा थक गया, तो बहुत थक गया, आज आ जाते इधर आते को ऐसे से, ऐसे से, प्यार से ऐसे से कर दी, तुम्हारे से दर्द ठीक हो जाता है, नहीं ऐसा होता? नहीं होता। तो ऐसी फीलिंग, यही बाबा, और बाबा के दिल में ऐसे नहीं कि बाबा के दिल में कौन जाके बैठ जाए, जबरदस्ती जाके बैठ जाओ क्या? अब विजुलाइज करो, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर वैसे बैठा हूँ, ऐसे बैठा हूँ, बाबा बाबा वहां सूक्ष्म वतन में है, यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर ऐसे सूक्ष्म वतन है, वहां पर ब्रह्मा बाबा बैठा है, मैं बाबा के दिल में बैठा हूँ, बाबा मुझे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुझे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे तुम्हारी आदत तो ठीक है नहीं, तुम 6 बजे उठते हो, अमृत वेला करते नहीं हो, मुरली सुनते नहीं हो ढंग से, मोबाइल पे मुरली सुनते हो, है ना, है ना, कोका कोला पीते हो, है ना, चाय पीते हो, दो दो चार चार कप चाय पी जाते हो, है ना, पराठे पकौड़े खाते हो और आपस में गुस्सा करते हो घर में, तो वहां जबरदस्ती जाकर कैसे बैठ जाओगे? तो विजुलाइज किया, 2 घंटा बैठ के आ गए, तो बाबा को बाबा से बात करके आ गए, ये योग थोड़ी ना है कोई, चलते फिरते उठते बैठते बाबा की ये अनुभव को करो, बाबा जो कहता है उसको जियो, हर समय आज्ञाकारी वफादार बनो और चलते फिरते रियलाइज करो, योग रियलाइज, योग माना रियलाइज कर, अनुभव करना है ना, योग विजुलाइज नहीं करना है, कुछ नया बनाना नहीं है हमको, जो बाबा ने बताया वो हमें अनुभव करना है, चलते फिरते अनुभव करना। तो हमको ये समझना है इस बात को चलते फिरते कि बाबा कैसा है, तो जैसे हम ये इसका अनुभव करते जाएंगे तो बाबा के सूक्ष्म वतन माना सब सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में पहुंच गए, राइट। और बाबा की गोद में जाके बाबा क्या क्या अनुभव कराएगा बच्चे? ये शिष्य रूपी ड्रामा है ना, ये शिष्य रूपी ड्रामा है, तुम्हारे जो भी संबंधी है, तुम जो भी है, हर आत्मा इस शिष्य रूपी ड्रामा में एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और परमात्मा कहते हैं देखो मैं हूं ना, जो मैं इसका ड्रामा का क्रिएटर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं और इसका सुप्रीम जस्टिस भी हूं, और हर आत्मा को इसको इस जन्म और उसके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले मतलब डायरेक्शन दे रहा हूं, इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, हमें हमारी क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, उसने मेरे को धोखा दिया, उसने मेरे को ऐसा किया, उसने मेरे को ये किया, उसने मेरे को चीट कर लिया, उसने मेरे को ये कहा, उसने मेरे को ऐसे बोला, है ना, हमारी बुद्धि में यही चलता रहता है। और भविष्य में क्या होगा, पास्ट में क्या बीत गया उसका चिंतन और भविष्य की चिंता, 90% विचार यहीं से आते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ ठीक हुआ है, कर्म इस जन्म और पिछले जन्म कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार तुम्हारी जो पत्नी बनी है ना, वो पत्नी तुम्हारी पत्नी नहीं है, पिछले जन्म के कर्मों का संबंध है, कोई ना कोई हिसाब किताब, इसलिए तुम्हारे पास आई है, कोई तुम्हारा पति बना, तुम्हारा बेटा बना है, बेटी बनी है, वो संबंध नहीं है, कर्मों का हिसाब किताब लेने के लिए तुम्हारे पास आई। वो हिसाब किताब क्या है, 100 साल पहले 10 रुपए तुमने उधार लिया था, उससे वापिस नहीं किया, तुम्हारा दोस्त था, अब तुम्हारा बेटा बन के आ गया, अब कहते हैं मेरा 10 रुपए वापिस करो, ऐसे नहीं बोलता, पर तुम्हें देना पड़ेगा ना, 10 रुपया दो, ब्याज कितना हो गया, 4,19,00,000 रुपया, 4,19,00,000 रुपया दो साथ में ना, इतना ब्याज हो गया, है ना, ये है कर्मों का हिसाब किताब, तुमने एक गाली दी किसी को, अब कितना ब्याज होगा 100 साल के बाद, कितना ब्याज हो जाएगा, बोझ ब्याज होगा, कितनी गाली खानी पड़ेगी, एक बार इंसल्ट की कितनी इंसल्ट खानी पड़ेगी, तुम बन जाओगे उसकी पत्नी, वो तुम्हारा रोज इंसल्ट करेगा, है ना, तुम बन जाओगे उसका नौकर, तुम्हें रोज इंसल्ट करेगा, काम भी कराएगा इंसल्ट भी करेगा, रोज डांट मारेगा, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ये नहीं होता, तुमको ये नहीं होता, तुम निकम्मे हो, बेवकूफ हो, है ना, नहीं, और चाहे चुपचाप सहनी पड़ेगी, वो कर्मों का हिसाब किताब है, ठीक है। तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कोई मुझे डांट रहा है, कोई मेरे को गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा, क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है, ठीक है, पक्का। तो जो हुआ अच्छा हुआ, खराब हुआ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बच्चों अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, ठीक है। और जो होने वाला है सबसे अच्छा होने वाला है, ठीक। तो इतना जो एबीसीडी का हम अनुभव करते हैं ना, इससे पवित्रता आती है। पवित्रता माना, जितना ही एबीसीडी का अभ्यास करते जाओ, जितना एबीसीडी का अभ्यास करते जाओ, उससे पवित्र। पवित्रता का अर्थ क्या है? मैं अपने सत्य स्वरूप में टिक जाओ, सत्य बाप से कंबाइंड हो जाओ, फिर दूसरे को उसके सत्य स्वरूप को देखो, चाहे पति को देखो, चाहे पत्नी को देखो, चाहे माँ को देखो, चाहे बाप को देखो, चाहे बहन को देखो, चाहे भाई को देखो, चाहे बच्चों को देखो, दोस्त को देखो, नौकर को देखो, बिजनेस पार्टनर, किसी को भी देखो। कैसे देखो? आत्मा समझ के देखो। पत्नी या पति समझ के मत देखो, माँ बाप समझ के मत देखो। माँ बाप या भाई बहन पति पत्नी समझ के देखोगे तो क्या याद आएगा? पास्ट याद आएगा। क्या याद आएगा? ये पहले ऐसे करता था, ये पहले ऐसे करती थी, इसने मेरे को बहुत दुख दिया, इसने मेरे को बहुत तंग किया, इसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला हुआ है, भविष्य में मैं कैसे इससे चलूंगी, है ना। तो पास्ट और भविष्य याद आता है, ठीक है। तो ये जो है, इतने अपने को आत्मा समझ के बाबा से कैसा माइंड होकर के फिर दूसरे की आत्मिक स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना, इसे कहते हैं पवित्रता। ये है पवित्रता, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होके सत्य बाप के साथ कंबाइंड होके। खाली आत्मा समझ के आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होके मत देखना, फिर फंस जाओगे। आत्मा में ताकत नहीं है। सत्य बाप के साथ कंबाइंड होके फिर दूसरे को आत्मा देखो, अपनी पत्नी को, अपने पति को, बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहन को, नौकर चाकर को, तब आत्मा देखो और फिर आत्मिक रूप में व्यवहार करो। इसको बोलते हैं पवित्रता, ठीक है। और इसमें ना लगाव हो किसी से, ना झुकाव हो, ना प्रभाव हो किसी का, ना टकराव हो, ना किसी के चारों से परे, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव से परे, है ना। और ड्रामा में जो कुछ हो रहा है उसमें क्या क्यों कैसे नहीं करना है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, साक्षी दृष्टा होकर देखो, ठीक। ये पवित्रता है, क्या क्यों कैसे करना भी अपवित्रता है, ठीक है। और जब ऐसी स्थिति आई, जब ये ज्ञान का मनन चिंतन किया और पवित्रता, ऐसी पवित्रता आई, तो फिर काम विकार पे विजय प्राप्त हो गई। इससे ज्ञान और योग, ज्ञान और पवित्रता से काम विकार पे विजय प्राप्त होती है। तो निर्विकारी बने, मतलब एक निर्विकारी का पार्ट है काम विकार। जितना अपने सत्य स्वरूप में टिक के बाबा से कंबाइंड होके दूसरे को देखोगे, किसी देहधारी को देखो, कोई भी हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, बताया ना मैंने डिफरेंट संबंध, तब आपको पवित्रता, ये तब काम विकार से मुक्ति मिलेगी। काम विकार माना देह का आकर्षण, तब देह के आकर्षण से मुक्ति मिलेगी। और फिर जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर आपके अंदर शांति आएगी, पवित्रता से शांति। शांति माना न पास्ट का चिंतन, न भविष्य की चिंता। आत्मा वर्तमान में अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सत्य बाप से कंबाइंड होके फिर सोचे, फिर देखो, कंबाइंड होके सोचो, कंबाइंड होके देखो, कुछ भी देखना है, किसी को भी देखना है, कंबाइंड होके देखो, कंबाइंड होके पढ़ो, कंबाइंड होके सुनो, कोई को सुनाता है कंबाइंड होके सुनो, अकेले मत सुनो, कंबाइंड होके बोलो, कुछ भी बोलना है तो, किसी से भी बोलना है, कंबाइंड होके खाओ, कंबाइंड होके शेयर करो, कंबाइंड होके संबंध संपर्क में आओ, कंबाइंड होके काम करो, कोई भी काम, घर में या ऑफिस में काम करो, और कंबाइंड होके सो जाओ। यह है शांति, नहीं तो शांति नहीं रहेगी। हमें 30 विचार आते हैं एक मिनट में, और 90 विचार, उसमें से 90% 27 विचार पास्ट से आते हैं, भविष्य से आते हैं, 3 विचार ही प्रेजेंट से आते हैं। 30 विचार माना अशांति, 3 विचार माना शांति। ये बनानी पड़ेगी ना, और क्या बनाओगे? मैंने क्या बताया, मेडिटेशन माना क्या? हर सेकेंड, हर संकल्प, हर श्वास में अपने सत्य स्वरूप में टिके रहना। कब बनाएंगे? विनाश होने के बाद, कोशिश, अटेंशन रखने की बात, अवेयरनेस। ये अवेयरनेस निरंतर रहनी चाहिए। जिसको अवेयरनेस है वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, जिसको अवेयरनेस नहीं वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकता, और जो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता अनुभव भी नहीं कर सकता है। तो पहले अवेयरनेस है, फिर एक्सपेरिमेंट है, फिर अवेयरनेस, फिर अनुभव है, एक्सपीरियंस। ये अवेयरनेस लगातार रहे, चलते फिरते, उठते बैठते, एबीसीडी का अभ्यास, पवित्रता का अभ्यास और शांति का अभ्यास। जब ऐसी शांति आ गई, ना पास ना भविष्य, वर्तमान में बाबा से कंबाइंड हूँ, और कंबाइंड होकर सब कुछ देखना पढ़ना सुना खाना पीना सब चल रहा है, सो चलना फिरना चल रहा है। तो ऐसी स्थिति जब होगी तो रूहानी प्यार आएगा। रूहानी प्यार माना, रूहानी प्यार का क्या डेफिनेशन है, रूहानी प्यार माना इस संसार में विश्व की हर आत्मा को उसके रोल के उसके रोल को महत्व देते हुए, उसके रोल को महत्व देते हुए बिना शर्त के आदर के साथ स्वीकार करना, हर उसके रोल को महत्व देते हुए किसी भी रोल को महत्व देते हुए आदर के साथ स्वीकार करना। अब आदर किसका क्या मतलब है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी पत्नी या पति है, या माँ बाप है, भाई बहन है, नौकर है, वो कोई भी रोल निभा रहा है। हमारे हमारे घर में क्या विशेषता होती है, जैसे रामायण में तो है ना फिक्स्ड है, ये रावण है, ये मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, शूर्पणखा है, ये ताड़का है ना, और ये राम सीता लक्ष्मण हनुमान कौशल्या के कई है, फिक्स है, हनुमान जी भी फिक्स है। हमारे घर में क्या होता है, देखो थोड़ी देर में तो हमारा बेटा अभी तो राम बना हुआ है, थोड़ी देर में तो कुंभकर्ण बन जाता है, थोड़ी देर में मेघनाथ बन जाता है ना। ऐसे ही हमारे घर में जो बहन है या माता है, अभी देखो अभी तो सीता है, थोड़ी देर में शूर्पणखा बन जाती है, थोड़ी देर में कैकेयी बन जाती है, थोड़ी देर में मंथरा बन जाती है, नहीं बन जाती। हमारा बेटा कभी हनुमान बन जाता है, कभी मेघनाथ बन जाता है, नहीं बन जाता ऐसे। तो कभी कभी कैसे बातें करता है, कभी कभी कैसा बिहेव करता है, कभी कुंभकर्ण में सोता रहेगा, उठेगा ही नहीं, इतनी आवाज तो उठेगा नहीं, है ना, नहीं होता। तो अभी उसके रोल को महत्व देना है, ठीक है, वो सो रहा है, उसको चिल्लाओ नहीं, थक गया होगा ऐसी सोच के, थक गया हो कोई सोने दो कोई बात, फिर आदर से उसको स्वीकार करो। फिर ये सोता नहीं, पड़ा रहता है, सोता नहीं है, काम नहीं, मेरा कहना नहीं मानता है, ये तो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसा करती है, ये ऐसा करती है, ऐसा नहीं, नफरत हो जाएगी घर में, संबंध खराब हो जाएगी, है ना। तो उसके रोल को स्वीकार करो, आदर से स्वीकार करो, और फिर ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के अनुसार उसकी पालना करो। हम क्या करते हैं, मुंह के अंदर आकर के वो पढ़ता नहीं है, फिर उसको टीचर से आकर पास करा देते हैं अप्रोच लगा के, ये रूहानी प्यार नहीं है, ये मोह है फिर, ठीक है। जब ऐसा रूहानी प्यार सबके प्रति रखो, किसी ने गाली दी हो, दुश्मन किसी ने आपके पैसा छीन लिया हो, कुछ भी किया हो, कितना भी दुख दिया हो, उसको जब सबको स्वीकार कर लोगे तो आपका आपकी जो कॉन्शियसनेस है आप दुनिया से ऊपर चले जाओगे। जब तक नहीं तो आत्मा इसी में फंसी, इसी दुनिया में फंसी हुई है, ठीक है, तब हम परमात्मा के रूहानी प्यार को अनुभव कर सकेंगे। ऐसा प्यार, हार्ट की बीमारी क्यों होती है, ये ऐसा है, ये मेरे को ऐसे करता है, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने मेरे को ऐसा किया, ये मेरे को जीने नहीं देता, ये इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, ये ऐसी है, ये ऐसा वो ऐसा, इसी के कारण हार्ट की आर्टरी ब्लॉक होती है, ठीक है। उनको दिल में रखा हुआ उन लोगों को, और वो ऊपर नीचे करते रहते हैं, और ये दिल की आर्टरी ब्लॉक होती रहती है। सबको स्वीकार करो आदर के साथ, महत्व देके। इंग्लिश में कहते हैं अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरीवन इन द यूनिवर्स। जब ऐसा प्यार सबके प्रति हो जाएगा, सबको स्वीकार, जजमेंटल नहीं बनना है, इससे सुधर नहीं सकता, ये ऐसा है ये वैसा, तब तक हम परमात्मा के प्यार को अनुभव नहीं कर सकते, तब तक हम परमात्मा के दिल में नहीं जा सकते, ठीक है। कोई ये करके के लगाव झुकाव प्रभाव टकराव में फंसा हुआ हो, वो कहीं मैं बाबा के सूक्ष्म में बाबा के पास गोद में जाके बैठ के आ गया, योग करके आया, वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। जब तक हम सबको स्वीकार नहीं कर सकते, सबको, वो कैसा भी है, बाबा कहता हर एक का अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, जब तक हम सबको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक बाबा हमको प्यार नहीं कर सकता। कर सकता है, एक माँ के पांच बच्चे हो, एक बच्चा चार बच्चों की पिटाई करके फिर माँ की गोद में जाकर छिप जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि निकल जा घर से बाहर, मेरे खबरदार जो मेरे पास आया, तो सिंपल सी लॉजिकल बात है ना, नहीं है। सबसे नफरत करता हो, किसी किसी कुछ करता हो, किसी कैसा हो, किसी कैसा हो, तो माँ को अच्छा लगेगा क्या? ब्रह्मा भी तो हमारी माँ है, शिव हमारा बाप है ना, शिव बाबा क्या करता है, ब्रह्मा के द्वारा अनुभूति कराता है ना, तो माँ बाप को अच्छा कैसे लगेगा। जब हम सबको एक्सेप्ट कर लेंगे तो बाबा हमको प्यार करेगा, ठीक है, समझ में आई ये बात, नहीं आई, ऊपर से गई है? तब हमें ऐसा फील होगा जैसे बाबा की गोद में चले गए, ऑटोमेटिक, हमको विजुलाइज नहीं करना है, हमको कोई चित्र नहीं बनाना है अपने आप, बाबा, तब ऐसा रियल होगा, मन बुद्धि ऐसा लगेगा वाह इतनी हल्की हो गई, इतनी हल्की हो गई, हम बाबा के पास पहुंच गए। बाबा के पास मैंने ऐसा फील होगा कि हम जैसे बाबा, हमारी मन बुद्धि से सब बातें निकल गई, हम दुनिया से ऊपर चले गए। दुनिया से ऊपर माना बादलों में नहीं चले गए, सूर्य चांद तारों में नहीं चले गए, कहीं ऐसे विजुलाइज नहीं करो, हम लोग ऐसा फील होगा मन बुद्धि इनसे फ्री हो गई, लाइटनेस की फीलिंग आई। और ऐसा फील होगा जब इस बात को हम बहुत गहराई से करेंगे, बहुत गहराई से करेंगे, ऐसा फील होगा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो कैसा महसूस होगा कि अब बाबा बाबा की गोद में बैठे, बाबा मुझे बहुत प्यार से देख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा तो हम जानते ना कैसा है ब्रह्मा बाबा, तो बाबा प्यार से देख रहे हैं, बाबा मुझे बहुत प्यार से देख रहे हैं। तब बाबा की बाबा के श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर फील होगा, इसका मतलब क्या, ऐसे नहीं कि बाबा का हाथ मेरे सिर पे आ जाएगा, बाबा ऐसे हाथ रखेगा, है ना, वो बाद में जाके अनुभव होने लगेगा जब हम जीना शुरू कर देंगे ऐसे ऐसे। बाबा के दांते में आपको ज्योति बिंदु तारा भी दिखाई देगा और बाप का रियल में हाथ भी दिखाई देगा, बाबा का हाथ ऐसे ऐसे भी लगेगा, ऐसा भी करता दिखाई देगा, महसूस होता दिखाई देगा। पर जब हमारा जीवन ऐसा हो जाए, अभी जीवन बनानी है ऐसा, अभी बनाना है कि, तो प्रैक्टिकल में क्या फील होगा, बाबा की हर बात में बाबा की श्रीमत याद आएगी, अभी याद नहीं आती है, फिर बाबा की श्रीमत, मत श्री है श्रीमत का हाथ हमारे मस्तक पे, मतलब हमारी बुद्धि में सदा बाबा का श्रीमत याद आती रहेगी। बच्चे ऐसे करो, बच्चे इससे बात कर रहा हूं, बच्चे इससे ऐसे बात करो, इसको ऐसा ऐसा करो, बच्चे इससे ऐसे बात करो, बच्चे इससे ऐसे बात करो, बच्चे इससे ऐसे बात करो, इस बच्चे से ऐसे व्यवहार करो, हर बात की श्रीमत, हर सेकंड में बाबा की श्रीमत की अनुभूति होती रहेगी। ऐसा फील होगा बाबा मेरे साथ है, हर समय ऐसा लगेगा बाबा मैंने बाबा को पा लिया, फिर है ना, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, ऐसी फीलिंग आती रहेगी। मैं जो सोचूंगा बाबा को टच होगा, बाबा जो कहेगा मुझे टच होगा, मतलब ऐसी फीलिंग आएगी कि बाबा सदा मेरे साथ, शक नहीं होगा, पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, बाबा क्या बता रहा है, पता नहीं बाबा जो टच कर रहा है, बाबा ये मेरी मन की बात है कि बाबा की बात है ना, शक नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये स्थिति है संतुष्टता की स्थिति, संतोष की स्थिति ना, बाबा मिल गया और क्या चाहिए, जब संया भय कोतवाल तो फिर डर कहे का, जब खुदा मेहरबान तो कोई भी पहलवान बन जाता है ना, है ना, तो अब जब खुदा मेहरबान हो गया तो फिर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अब इच्छा कोई नहीं रही, इच्छा मात्र अविद्या, ये स्थिति अतीन्द्रिय सुख की स्थिति है। तो जब शांति, ऐसा शांति और प्यार खत्म आ गया तो क्रोध खत्म हो गया, जब ऐसा शांति और प्यार आ गया, जैसे मैंने बताया ना अभी, शांति और प्यार, क्रोध रहा, फिर क्रोध क्यों आता है, किसी की पास्ट को देख के क्रोध आता है, किसी का भविष्य को देख के क्रोध आता है, और किसी की ये ऐसा करता है वो वैसा करता है, उसने मेरे को ऐसा किया उसने, तो ही क्रोध आता है ना। हमने शांत पास्ट भविष्य को भी खत्म कर लिया, वर्तमान में अपने सत्य स्वरूप बाबा से कंबाइंड हो गए और सबको माफ कर दिया, सबको स्वीकार कर लिया आदर से, तो गुस्सा खत्म हो गया। अब जब ऐसा अतिंद्रिय सुख आ गया, बाबा सदा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब क्या हो गया, अब क्या खत्म हो गया, लोभ खत्म हो गया। अतिंद्रिय सुख की अनुभूति लोभ को खत्म कर देती है, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति क्या खत्म कर देगी, लोभ, लोभ माना पैसे का लोभ होता है, नाम मान शान का लोभ होता है, अब बाबा मिल गया मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया से भी नहीं चाहिए, कोई मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, कोई नाम मान शान नहीं चाहिए, नहीं, तो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति लोभ खत्म करती है, ठीक है, और शांति और प्यार की अनुभूति क्रोध खत्म करती है, और ज्ञान और पवित्रता की अनुभूति क्या करती है, काम विकार खत्म कर देती है। निर्विकारी बनना ना, ये निराकारी स्थिति का अभ्यास है ना, निराकारी स्थिति का अभ्यास करते करते निर्विकारी बनते जा रहे, जो ब्रह्मा बाबा ने किया प्रैक्टिकल में किया ना, और फिर जब ऐसी स्थिति है बाबा और बाबा में, बाबा के पास हूं, तो मैं बीच बीच में क्या होगा, मेरी स्थिति में आनंद की अनुभूति होगी, आनंद माना अब मैं बाबा की याद में खो जाऊंगा, बाबा से लव में लीन हो जाऊंगा, माना अब बाबा और मैं और बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ऐसा एक दूसरे में, जैसे होता है ना दो जन बैठे हैं, अभी दोनों एक दूसरे मिल गए, अब दोनों को कोई दुनिया की खबर नहीं है आसपास क्या हो रहा है, ऐसी फीलिंग सूक्ष्म वतन, माना सूक्ष्म वतन ना, बाबा के दिल में अब ब्रह्मा बाबा और मैं क्या हो गए, दोनों ब्रह्मा बाबा कौन, संपूर्ण पावन सत्व प्रदान बुद्धि, संपूर्ण पावन सत्व मन और संस्कार, पावन बुद्धि पावन मन पावन संस्कार, अब मेरा मन भी इतना शुद्ध हो गया, मेरा मन पहले कैसा था, ये ऐसा वो वैसा, अभी मेरा मन कैसा हो गया, उसमें कोई इच्छा नहीं, उसमें कोई भी, सब अच्छे हैं, सब पवित्र है। तो क्या हो गया? अब बाबा का मन, बाबा का दिल और मेरा दिल क्या हो गया? मिल गया ना। तो ये है आनंद। अब ऐसी स्थिति में आनंद, आत्मा क्या महसूस करती है? देह और देह की दुनिया के बंधन के पार महसूस करती है। कोई समय का पता ही नहीं लगता है। टाइम, आत्मा टाइम और स्पेस से परी चली जाती है। उसमें ना टाइम का पता लगता है, ना स्पेस का पता लगता है, राइट? ये स्थिति में आधा घंटा बैठ जाओ, लगेगा दो मिनट भी नहीं हुए, पता ही नहीं लगेगा। वो दो मिनट में एक दस घंटे जितना अनुभव हो जाएगा। ये ऐसा ऐसा दो मिनट का अनुभव दो घंटे की नींद के बराबर है। ऐसा दो मिनट का अनुभव हो जाए ना, तो दो घंटे की नींद पूरी हो जाए। अमृत वेले अगर दस मिनट का, आठ मिनट का अनुभव हो जाए ना, तो आठ घंटे की नींद बराबर हो जाए। रात को शायद आप नींद ना ही हो, आठ मिनट ही अनुभव हो जाए, बस नींद की वापिस आवश्यकता नहीं रहेगी। जिसको ऐसा आनंद आ गया, उसको मोह खत्म हो गया। जिसको बाप के साथ ऐसा अनुभव हो गया, उसको दुनिया का कोई मोह रहेगा कि मेरा बेटा है, ये नाती है, ये नातिन है, ये पोता है, पोतरी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चा है? कोई मोह खत्म, मोह जीत हो जाएगा। कुछ कुछ मिलेगा तो मोह छोड़ेंगे ना। कुछ एक हाथ में मिले और दूसरे में उससे बड़ा मिले तो छोटा छोड़ देते हैं ना आप ही। एक हाथ में को हजार रुपए दे दे, इसमें एक रुपया हो तो एक रुपए वाला हाथ अपने आप ढीला हो जाता है। एक हजार रुपया आ गया ना, नहीं? अब इस दो हजार का नोट होता है ना, दो हजार का नोट आ गया, एक रुपए का हाथ छूट गया, नहीं? तो ऐसे हम लोग क्या, हम लोग ना जो बनिए होते ना, बनिए ना, एक आदमी बनिया समझते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको क्या होता है, वो बनिया डूब रहा था तो एक आदमी उसे निकालने के लिए अंदर नदी में कूद दिया। तो उसको कहा, भैया हाथ दे, हाथ दे, मैं तेरे को बाहर निकाल लूं। वो हाथ ही नहीं देवे। एक बूढ़ा आदमी किनारे पे खड़ा था, उसने कहा, भैया इसको ऐसे नहीं बोलो, बोलो मेरा हाथ ले, मेरा हाथ ले। तो उसने कहा, मेरा हाथ ले, तुरंत पकड़ लिया, है ना। तो हम सब कौन है? बनी है ना, है ना? तो बनी समझते हो ना, बिजनेसमैन है ना। तो हम कहते हैं, भाई हम बाबा कहता ले लो, ले लो तुम लो, है ना। तो हम पकड़ लेते हैं, हमको बाबा कहते दो 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 मेरे को, तो बाबा कहते देने का मेरे नहीं आता है, ठीक है, तो समझे। आनंद माना ऐसा, है ना। तो इतना हमें बाबा से ये मिल गया, ये वाला, तो हमें फिर दुनिया के किसी मोह जाता ही नहीं, किसी में न्यारे प्यारे हो जाते हैं अपने आप। प्रैक्टिकल फीलिंग है ये। जिनको आनंद की स्थिति रहती है, उनको किसी में मोह नहीं जाएगा। केयर सबकी करेंगे, प्यार सबको करेंगे, किंतु जैसे दादियों को है, बाबा को सब आनंद में रहते थे। बाबा अतिंद्र सुख और आनंद की अनुभूति थी, पर बाबा किसी में न्यारा प्यारा था। बाबा किसी से विशेष चिपका हुआ नहीं था, किसी के प्रति विशेष लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव नहीं था। इसलिए हर एक को लगता बाबा मेरा है। किसी विशेष के प्रति अगर लगाव झुकाव होता, बाबा को प्रभाव होता, तो क्या होता? बाबा सबको प्यारा लगता, ब्रह्मा बाबा सबको प्यारा लगता, नहीं लगता ना। हम क्या होता है, हमारे घर में क्या होता है, हम किसी एक से जुड़ जाते, दो से जुड़ जाते, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, आज आ जा, आ मेरे पास, है ना। तो फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं, ये तो अपने में खोया हुआ है। तो आनंद की स्थिति हमें मोह से मुक्त करती है। तो ये हो गया ना, निर्विकारी हो गया ना, काम विकार पे, मुझे प्राप्त, क्रोध पे, लोभ पे, मोह पे, अहंकार पे, और फिर अहंकार। और अहंकार पे विजय, जब ऐसा अतिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति हो गई, तो हमें क्या होता, शक्ति आने लगती है। कौन सी शक्ति? सत्य को परखने की शक्ति आ गई। सत्य क्या है? ऐसा अतिंद्रिय सुख अविनाशी है, आनंद अविनाशी है। खाना पीना खाया, थोड़ी देर लगेगा स्वाद, फिर उसके बाद खत्म हो गया, फिर और खाने को चाहिए, है ना। कुछ देखा और सिर दर्द हो गया, थोड़ा सा अच्छा लगा, हाँ फिर सिर दर्द हो गया, है ना। सुना कुछ, कान में दर्द हो गया, तो वो थोड़ा सा सुख, अल्पकाल का सुख, काग निष्ठा के समान थोड़ा सुख, उसके पीछे बहुत सारा दुख। किंतु बाबा से जो अतिंद्रिय सुख आनंद आया ना, ये मैं ऐसे बैठा हूं, एक बार सुबह सुबह अमृत वेले अनुभव किया, आज सुबह का अनुभव ऐसे बैठ गया, खाली बैठा हूं, वो अनुभव फिर होने लग गया। जब चाहो, जब चाहे, जहां चाहे अनुभव होने लगता है। काम करते करते ऐसे अपने रोमांच खड़े हो जाते हैं, क्यों? वो बाबा का सुबह वाला याद आ जाता है, अमृत वेला अनुभव आ जाता है, ठीक। तो ये जो फीलिंग है सत्य को प्रखनी शक्ति, ये सत्य को प्रखनी शक्ति आ गई। प्रखनी शक्ति नहीं खाली, कौन सा शक्ति? सत्य क्या है, सदा रहने वाला क्या है? सत्य सदा रहने वाला ये वाला रूहानी प्यार है, अतिंद्रिय सुख आनंद है। इसके लिए मुझे दुनिया छोड़नी पड़े, छोड़ दो। घर वाले कहें छोड़ दो, कोई बात नहीं छोड़ दिया। घर वाले कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा कोई बात नहीं। घर वाले कहते घर से निकाल देंगे, कोई बात नहीं निकाल दो। घर वाले कहे तुम्हें खाने को नहीं देंगे, अच्छा कोई बात नहीं। सारे तुम्हारे खिलाफ हो जाए, कोई बात नहीं। सुना? तो ये ऐसी शक्ति आपके अंदर आ गई, ऐसा अतिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति आ गई, तो ये सत्य को प्रकटनी शक्ति आई, तब आई प्रकटनी शक्ति। अगर आनंद की अनुभूति ना आती, बाबा के साथ की ऐसी अनुभूति ना आती, बाबा के गोद की अनुभूति ना आती, तो सत्य को प्रकटनी शक्ति ना आती और मेरे मन से बेहद का वैराग ना होता, त्याग ना होता। ये अनुभूति आने के कारण त्याग और वैराग हुआ, नहीं हुआ। अब सत्य निर्णय करने शक्ति आ गई, अब मुझे तो ये करना है, मुझे तो बस यही करना है, मुझे कभी अमृत वेला मिस नहीं करना। सारे लोग नाराज हो तो नाराज हो, छोड़े तो छोड़े, है ना। कहते हैं कहते कितने अब मार उठे या बाबा, है ना, है ना। एक गीत है ना, ऐसे फिल्म का गीत था वैसे तो, है ना? मैं 30 साल पहले फिल्म देखी थी, 32 साल पहले, है ना। मैंने बाबा से हाँ कर ली तो कर ली, है ना। अब घर वाले रूठे चाहे कोई दुनिया रूठे, कोई बात नहीं, समझ। ऐसा नशा निर्णय कर दिया। अब निर्णय कर लिया तो बड़ी बात को छोटा कर लिया, विस्तार को सार में ला लिया, है ना। अब विस्तार में ना बाहर जैसी बात थी उसको मैंने क्या बना लिया, राय बना लिया। अब समेट लिया, मन बुद्धि को समेट के ऊपर लगा दिया मन बुद्धि। अब क्या होगा, अब मन बुद्धि को ऊपर लगा दिया, नीचे वाले क्या करेंगे, दे भी खींचेगी नीचे को और घर वाले भी खींचेंगे, तो फिर क्या करें, सहन करने की शक्ति आ गई। अब सहन करने की शक्ति आ गई तो फिर क्या हुआ, समाने की शक्ति आ गई, है ना। सहन किया, जो सच्चा सहन करता है ऐसा बच्चा, वो लोगों को सुनाता नहीं मैंने ये सहन किया, मैंने ये सहन किया, चुपचाप, क्योंकि टाइम ही नहीं सुनाने का। बाबा से प्यार में खोया हुआ है ना, कनेक्शन जोड़ा हुआ है बाबा से, करंट आ रही है, आनंद आ रहा है। अब ऐसे व्यक्ति को सामना करने की शक्ति, कुछ भी नई बात आए ना कोई हर्जा नहीं, जो मर्जी आ जाओ, है ना। कहते हैं ना सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, जिसको जो करना है कर लो, है ना। जितनी भी समस्याएं आए सबको फेस करने के लिए तैयार है। अच्छा फिर कोई ऐसा व्यक्ति भी आए मेरे को मदद चाहिए, अच्छा लो ये मदद, सहयोग भी कर देते, ठीक है। आठों शक्ति आपस में कनेक्शन है। जो सत्य को नहीं परखता है, सत्य निर्णय नहीं कर सकता है, वो छोटी बात को राई का पहाड़ बना देता है, राई का पहाड़ बनाता है, वो समेट नहीं सकता है, वो उसकी मन बुद्धि फैली रहती है, समेट नहीं सकता, वो सहन नहीं कर सकता है, वो समा नहीं सकता है, वो किसी बात का सामना नहीं कर सकता है, वो कोई दूसरों का सहयोग नहीं कर सकता है। जो सत्य को परख लेता है, सत्य क्या है, अतिंद्रिय सुख और आनंद, आनंद की स्थिति, ये आनंद की स्थिति सत्य है, सत्य है। अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपी से पूछे, ये है। तो ये स्थिति आ गई तो ये स्थिति, ठीक है। तो ये है निर्विकारी बनना, निराकारी स्थिति के द्वारा, एबीसीडी के द्वारा क्या बनना, सत्य क्या है, निराकारी स्थिति ही सत्य है। चलते फिरते उठते बैठते जितना इसको अभ्यास करते जाओगे, उतना पवित्रता शांति से क्या होगा, क्रोध खत्म होता जाएगा, सॉरी ज्ञान और पवित्रता से काम विकार खत्म, शांति और प्यार से क्रोध खत्म, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति से लोभ खत्म, और आनंद की अनुभूति से मोह खत्म, और सर्वशक्तियां आई तो अहंकार खत्म। अहंकार सबसे बड़ा है, उसके लिए सत्य को प्रकटनी शक्ति चाहिए। संबंधों में भी हर जगह सत्य क्या है, ये सत्य नहीं है, संबंध झूठा है, ये मतलबी है, स्वार्थी है, इसमें मुझे नहीं फंसना है, अहंकार है ना। ये चीज मुझे नाम मान शान दे रहे हैं, मेरी महिमा कर रहे हैं, मुझे नहीं फंसना है, अहंकार नहीं, ये चीजों को मुझे फंसना नहीं है, अहंकार नहीं। विशेषता का अहंकार, नाम मान शान का अहंकार, पद का प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये बाबा की देन है, मेरी देन नहीं है। तो ये अहंकार खत्म, सत्य को निर्णय कर लिया, बड़ी से बड़ी बात को छोटा कर दिया, समेट लिया, सहन समाना सामना सहयोग, ये जब आठों शक्तियां होती है तो अहंकार पर विजय होती है। तो ऐसे निर्विकारी, और निर्विकारी बनने के बाद इसमें निरहंकारी, फिर निरहंकारी बन गए, और जब निरहंकारी बने ना, फिर जब सातों आठों शक्तियां आ गई, देखो इसमें निरहंकारी अलग क्यों कहा गया, वैसे तो एक बार निरहंकार हो गया, निर्विकारी में निरहंकार हो गया, और जब ये आठों शक्तियां जीवन में आ जाती हैं तो सातों एनर्जी बराबर हो जाती है, भरपूर इक्वल होने लगती है, सातों एनर्जी का बैलेंस, फिर ज्ञान जितना ज्ञान उतनी पवित्रता आ जाती है, फिर जितनी पवित्रता उतनी शांति आ जाती है। शांति माना, शांति माना क्या, वर्तमान नहीं भविष्य नहीं, वर्तमान में बाबा से कंबाइंड होकर सोचना, बोलना, देखना, सुनना, सब कुछ करना, ये है शांति। वर्तमान बाबा से कंबाइंड, पवित्रता माना बाबा से कंबाइंड होकर सबको देखना, व्यवहार करना। पवित्र शांति माना बाबा से कंबाइंड होकर सोचना, बोलना, हर कर्म करना। प्रेम माना सबको स्वीकार कर लेना, जो जैसा भी है आदर से स्वीकार कर लो, जजमेंटल नहीं होना। अत्यंत सुख माना बाबा की गोद में पाना था, सुख पा लिया, काम क्या बाकी रहा, इच्छा मात्र अविद्या, कोई इच्छा नहीं, संतोष, ये है अत्यंत सुख की अनुभूति। आनंद माना आत्मा देह और देह की दुनिया के बंधन के पार परमात्मा के साथ परमात्मा के प्यार में खुलबलीन हो गई, वो स्थिति आनंद, और उससे सर्वशक्तियां प्राप्त हुई। अब ये सर्वशक्तियां सातवें एनर्जी का बैलेंस बन जाता है, और जब सर्वशक्तियों सातवें एनर्जी का बैलेंस हो गया, अब वो हमारे अंदर वो एनर्जी आ जाती है, हीलिंग एनर्जी आ जाती है। कौन सी एनर्जी आती है? ये ज्वाला स्वरूप स्थिति आ जाती है। ये ज्वाला स्वरूप स्थिति हमारे अहंकार को खत्म कर देती है, देहभान को खत्म कर, देह अभिमान को खत्म कर देती है। वो ज्वाला स्वरूप स्थिति चाहिए देह अभिमान को खत्म करने के लिए, है ना, देह भान को खत्म करने के लिए। फिर वो आत्मिक स्थिति का आखिरी पेपर जो ना क्या है, मैं आत्मा हूं, सिर्फ मैं आत्मा हूं, ये इसका स्वरूप में टिक जाए, वो सारा विक्रम विनाश होगा ना, जब वो विक्रम विनाश होगा ना सारा, तो फिर अंत में स्थिति आएगी निरहंकारी स्थिति, मतलब टोटल विधेयी स्थिति, बीज रूप स्थिति है, ठीक है। तो एक्चुअली वो बीज रूप स्थिति निरहंकारी स्थिति है, जिसमें जरा भी योगी वही है जिसने किसको मारा हो, अहंकार को मारा हो, तो वो ज्वाला स्वरूप स्थिति हो, जब कोई भी विक्रम का भान नहीं रहेगा, विक्रम का बोझ नहीं रहेगा, तो वो स्थिति एक्चुअली है हमारी निरहंकारी स्थिति। तो ऐसा हुआ निराकारी, निर्विकारी और तो ये है ब्रह्मा बाप समान स्थिति, है ना। ये बनाने के लिए कुछ और नहीं करना है, कोई किताब नहीं पढ़नी है, कोई कुछ नहीं, मुरली बाबा की मुरली का सारा दिन मनन ना रिवाइज करो, चिंतन माना गहराई में जाओ, मंथन माना और गहरा, बाबा के साथ बाबा से पूछो, मंथन माना बाबा से पूछो, बाबा से, बाबा इसका अर्थ क्या है, बाबा मेरे जीवन में कैसे लाऊं। आप ये कहते बच्चे मीठा बनो, बच्चे तुम सच्चा बनो, बच्चे तुम ऐसा बनो, मैं कैसे बनू मीठा, सारा दिन तो लोग गुस्सा करते हैं मेरे को, मैं कैसे मीठा बनू, फिर बाबा समझाएगा बच्चा मीठा ऐसे बनो, तुमने भी गुस्सा किया ना इसको, तो गुस्सा करेंगे ना, हिसाब किताब बराबर हुआ, कोई बात नहीं, गाली देते बाबा वो तुम्हें रोज सारा दिन गाली देते हैं, बच्चे तुमने गाली दी हुई ना उसका तुम्हारा ब्याज लगा के वापस कर रहे हैं, चिंता नहीं करो, देने दो गाली, कोई बात नहीं, वो गाली नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर महिमा के पुष्प चढ़ा रहे हैं, तुम्हारा हिसाब किताब हल्का कर रहे हैं। देखो तुम्हारे सिर पे मान लो किसी आदमी के सिर पे 10-10 किलो की 5 बोरी रखी हो, उसमें से कोई आदमी 4 बोरी उतार ले, तो क्या करना चाहिए हमको, थैंक्स देना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, मैं 50 किलो का वजन उठा के तंग हो रहा हूं, पसीना पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, अब 4 बोरी से उतार दी, 10 किलो ही बचा है, तो हमने हल्के हो गए ना, तो थैंक्स देना चाहिए ना। अब मान लीजिए आप हैं, या आपका बेटा है, या आपकी वाइफ है, या कोई भी है, दोस्त है, आपने उसको 10 साल पहले एक गाली दी थी, अभी 10 साल के बाद उसका ब्याज लग के उसकी कितनी हो गई, 5 गाली हो गई, आज उसने 4 आपको दे दी, तो आपको क्या होना चाहिए, दुखी होना चाहिए सुखी होना चाहिए, दुखी सुखी होना चाहिए ना, पर आप दुखी हो जाते हो, है ना, दुखी हो जाते ना, दुखी हो जाते, तो 4 तो उतर गई ना तुम्हारी, हल्के हुए नहीं हुए, 5 का बोझ तुम्हारे पे चढ़ा था, तो 4 तो दे दी उसने, अभी एक ही बची ना, 10 किलो ही बचा, 50 किलो तो 40 तो उतर गया, तो ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जब अपने आप को चलते फिरते अभ्यास करोगे ना, तो हल्के होते देखो, जो मैं जैसा हूं, मैं जो हूं जैसा हूं, मेरे को पता है ना अपने अंदर, बाबा को पता है। अब कोई मेरी महिमा करे बैठ के, आप ऐसे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसे हैं, आपसे तो फरिश्ते की खुशबू आती है, आपके तो बहुत गुणों की खुशबू आती है, मुझे पता है मेरे अंदर कितने गुणों की खुशबू आती है, मैं कितना फरिश्ता हूं, मुझे पता है ना, मैं अच्छा, कोई कहे आप तो बहुत खराब हो, आप तो ब्राह्मण कैसे हो, ब्राह्मण ऐसे होते हैं क्या, है ना, आप तो ऐसे हो क्या, आप ऐसे हो ना, तुम तो लायक ही नहीं, नालायक हो, अब मुझे पता है वो नालायक कहने से मैं नालायक होगा क्या, मुझे पता है मेरी स्थिति क्या है ना, तो किसी के बड़ा करने से मैं बड़ा नहीं होता, किसी के छोटा करने से मैं छोटा नहीं होता, ठीक है ना। अपने सम्मान में रहो ना, तो किसी गाली का असर नहीं पड़ता है, बल्कि बाप के साथ क्या होता है, अंदर नशा चढ़ जाता है, सत्य का नशा होता है, सारी दुनिया अपोजिट हो जाए, मुझे बड़ी दादी कहा करती थी, कभी कभी दादी को कोई कहते थे ना आके, दादी हमको तंग करते हैं, दादी हमें बहुत सहन करना पड़ रहा है, हमें डिपार्टमेंट में बहुत सहन करना पड़ता है, ऊपर भी नीचे भी, हम बीच में हैं, ऊपर वाले भी तंग करते, नीचे वाले भी कुछ कुछ बोलते रहते, हमें तो सारा चारों तरफ से हमें बांडवन में रह नहीं सकते, हम छोड़ के जाए। तो दादी कहती थी देखो, दादी का मैं रोज दादी को मिलने जाता था, सुबह सुबह दादी को मिलने जाता था, सुबह दादी का ऑर्डर था कि मुझे सुबह मुरली के बाद 5 मिनट जरूर मुझसे मिलके जाओ, तबियत मेरी खराब हो चाहे नहीं हो तो मेरे को मिलके जाना। अच्छा तो मैं ठीक है 5 मिनट रोज मिलके जाएंगे। तो दादी के पास गए तो दादी ने एक दिन मुझे कहा, गुप्ता जी ये जो उस दिन मुरली में ये बात आई थी, सच्चे को सहन करना पड़ता है, पीछे भी एक दिन मुरली में आई थी उसमें भी रिवाइज हुई, उस दिन भी सच्चे को सब कुछ सहन करना पड़ता, झूठे को कुछ भी सहन नहीं करना पड़ता। तो दादी कहते थे सच्चा जो होता है ना, अब मटका है सामने टूटा रखा है, क्रैक है, वो दिखाई दे रहा है क्रैक, टूटा रखा है, उसको कोई बजाएगा, उसको बजा के देखेगा? कोई नहीं बजा के देखेगा। जो साबुत दिखाई देगा उसको क्या करेंगे? यहां से बजाएंगे, नीचे से बजाएंगे, साइड से बजाएंगे, इधर से बजाएंगे, चारों तरफ से बजाएंगे, फिर कान में लगा के भी देखेंगे, है ना। तो अगर आपको कोई बार बार बजा के देख रहा है, इसका मतलब क्या है? लगता है आप सच्चे हो, लगता है आप पक्के हो, है ना। मैं तो आपको खुश होना चाहिए कि मैं पक्का हूं, सच्चा, कान में लगा के देखता है, सच्चा है, ठीक है। कभी दुखी नहीं होना, सच्चे को कभी टेंशन नहीं आती है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए टेंशन नहीं आती है, झूठे को, झूठे ग्रुप में रहते हैं और सच्चे अकेले रहते हैं, ठीक है, है ना, पक्का। सच्चे कैसे रहते हैं? शेर अकेला रहता है और हिरन बकरी ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, झुंड में रहते हैं ना। तो हम क्या, हमें क्या है, हम बाबा के कौन से बच्चे? शेर बच्चे हैं। कौन बच्चे? अकेले माना जैसे बाबा के साथ रहने वाले, अकेले नहीं है ना, बाबा के साथ रहने वाले, ठीक है, तो बाबा से कंबाइंड रहने वाले। तो बाबा से कंबाइंड रहो तो ना आपको काम विकार आएगा, ना क्रोध आएगा, ना लोभ आएगा, ना मोह, ना अहंकार, ठीक है। और फिर निराकारी, निर्विकारी, निर्भयंकारी, बाबा बाप समान मन के हम बाबा के साथ, बाबा के पास क्या चलेंगे, घर में चलेंगे, क्या बनेंगे, साथी बनेंगे, चलेंगे बराती बनेंगे, चलना साथी, साथी को सजा नहीं मिलेगी और बराती को। आज की मुरली कितनी भयानक थी पता, भयानक थी ना, सेकंड पेज पे कितना भयानक था ना, थोड़ा भी पाप करेंगे तो क्या होगा, बाबा से कोई विक्रम नहीं छिपा सकेंगे, है ना। बाबा सजा, पाप आत्मा को यहां भी सजा मिलेगी, वहां भी सजा मिलेगी, वहां जा नहीं सकेंगे ना, है ना। इसलिए कोई पाप ना हो हमसे, कोई पाप ना हो, इसलिए हर चीज एक तो पेशेंस धारण कर लो, पेशेंस में ना जल्दीबाजी मत करो, धीरेता, एक योगी की निशानी होती है गंभीर होता है, योगी गंभीर होता है, धीरेता होती है और पढ़ाई पेट। बाबा ने एक मुरली आई थी बाबा की, कि बाबा से करंट कौन खींच सकते हैं, बाबा से करंट वो खींच सकते हैं जो इनका पढ़ाई पे टेंशन है, सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन चलता है इनको, है ना। बाबा की मुरली सदा जेब में रखो ना, बाबा की मुरली को जेब में रखो, और लव लेटर ना बाबा का, लव लेटर कैसे पढ़ते हैं, लव लेटर रखते कहां बताओ, पहले तो दिल के पास छुपा के रखते हैं और पढ़ते कब है, जब देखते आसपास कोई ना हो, है ना, आसपास कोई नहीं, फिर चुपचाप जोर ऐसे चोरी से निकालते हैं, फिर ऐसे छुपा के यूं पढ़ते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, है ना, फिर जैसे और कोई आ रहा है फिर जेब में रखे छुपा लेंगे ना, फिर लगता है अभी अभी चला गया, फिर निकालेंगे, बुद्धि तो वहीं रहती है ना, फिर निकाला, फिर पढ़ा, एक लाइन पढ़ी, अरे सामने से कोई आ गया, चलो फिर छुपा, है ना। तो कितनी बार पढ़ते हैं वो लव लेटर, दिन में 50 बार पढ़ते, 100 बार पढ़ते हैं, और बुद्धि सारा टाइम इसी में रहती है, ऐसे ही बाबा का लव लेटर है, इसमें सारा दिन बुद्धि इसी के अंदर रहनी चाहिए, सुना, जैसे ही मौका लगा निकालो लेटर बाबा की याद में, कागज पे नोट कर लो, है ना, छोटे कागज पे नोट कर, जेब में रखो, दिन में सारा दिन पढ़ो, सारा दिन बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, और उसी में खोए रहो, यही मुरली का मनन करना ही योग है, मुरली का मनन चिंतन मंथन, जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगाओ, फिर नए संस्कार बन जाए, ऐसे करते करते हम क्या बन जाए, निराकारी, इसी का मनन चिंतन मंथन करने से, कुछ और नहीं, बाबा का बाबा सत्य है, बाबा ही सत्य सुनाता है, बाकी सब झूठ सुनाते हैं, तो बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन करते रहो, इसी से आप निराकारी बनेंगे, इसी से निर्विकारी बनेंगे, इसी से निरहंकार, इसी से फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता का मतलब यही है ना। ओम ओ
तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है। व्यक्त से अव्यक्त हो, व्यक्त से अव्यक्त हो, मीठे वतन में चलना है। ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है, एक यही तमन्ना है।